जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जना यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जना जमुना तीर बन जारी जमुना तीर बन जारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन जमुना तीरा बन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotarashat His Divine Grace Abhaycharana Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jaya Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Premcha Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivrinda Ki Jaya Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Sham Kunda Radha Kungiri Govardhan Ki Jaya Shri Vrindavan Dham Ki Jaya Navadip Dham Ki Jaya Jagannath Puri Ki Jaya Gangamai Jamunamai Ki Jaya Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Jaya Kaliyuga Pavana Harinam Sankirtan Ki Jaya Gaur Premanande All glories to the assembled devotee All glories to the assembled devotee All glories to the assembled devotee. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Ajnanati Nirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhadvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हर प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सबका स्वागत है। आज का जो विषय है कर्ण फिश के समान है। कहां से चालू करो समझ में नहीं आ रहा। आपके सामने अगर थाली आती है बहुत दिन के बाद आप भूखे हो और एक ही साथ में सब कुछ बना कर दिया है प्लेट, तो खाने वाले कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कहां से खाओ। तो जो भारत में अगर कभी कभी भक्तों को भी पूछो, कई भक्त उनको पूछने से उनको पूछो कि आपके हीरो कौन है महाभारत के, वो कहेंगे कर्ण है। क्योंकि व्यासदेव जी ने इसका जो चित्र दिया है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, यानी कि सब सुविधाएं होने पर भी जीव कैसे अपने स्वतंत्रता को गलत उपयोग कर सकता है। कर्ण यानी कि जो कान से संबंधित है, कर्ण विकर्ण और कुंभकर्ण एक ही जात के हैं। क्योंकि जानते थे, बोलते भी है धर्म की बातें, लेकिन उसको प्रयोग में लाना उनके लिए कठिन बन जाता है। तो अगर आप रामायण में कुंभकर्ण के बारे में पढ़ोगे, हम कुंभकर्ण के बारे में केवल एक ही प्रकार से हमें दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। लोग रामायण में हो या कोई कथा करते हैं तो कुंभकर्ण ने कि केवल सोता रहता था, लेकिन उसमें भी तत्व ज्ञान की जानकारी थी। वो जानता था कि भगवान राम साधारण नहीं है। जब वो युद्ध के लिए जाते हो कहते कि देख रावण, अब मैं जा रहा हूं और उसके बाद तू जाएगा, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और जब विभीषण उसके सामने आते हैं वो कहते हट जाए यहां से, तू मेरे से भिड़ मत, क्योंकि तू अकेला बचेगा, तू धार्मिक है तू अकेला बचेगा और हमारे सबके लिए पिंडदान तू ही करेगा। अगर तू मेरे सामने खड़े हो जाएगा, क्योंकि मैं इस समय क्या ठीक है क्या गलत है इसको भूल रहा हूं और इस भूल के कारण मैं आपको भी मार सकता हूं, जीवित रहो जाओ, ऐसा करके उनको वहां से हटा देते। जानते थे विकर्ण जिसमें भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं, शांति का संदेश देते हैं, और शांति का संदेश देने के बाद जो दुर्योधन आदि लोग भगवान कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं और सात्यकी इसकी चर्चा करते हैं, इसका भांडा फोड़ देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से वापस जा रहे थे उनको विदा देने के लिए बहुत कम लोग हैं, भीष्म द्रोण कृपा और विकर्ण गए हुए थे और विदुर जी, और कोई दुर्योधन के भाई नहीं थे, विकर्ण गए हुए थे। धर्म की बातें वो कहते हैं जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, लेकिन उसको पालन करने में कठिनाई आ गई। इसलिए बताया जाता है कि नहीं जानना, कुछ भी जानना नहीं भगवान के बारे में, तत्व के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, ये क्या है? अज्ञान है। हम इसकी चर्चा कर रहे थे, अज्ञान है। और दूसरा है कि नहीं समझना। कभी लोग प्रयास करते गीता पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कभी कभी जो पहले जो नास्तिक वैद्य लोग थे वो कहा करते थे, अगर आपको नींद नहीं आती हो तो गीता पढ़ो। क्यों? तो गीता पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, तब से नींद आ जाएगा आपको। और तीसरा है कि थोड़ा समझ लेते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। क्यों कर नहीं सकते? दुर्बलता के कारण, आलस के कारण। वो जानते हैं कि करना चाहिए, कलत पण वळत नहीं, ऐसे बोलते हैं मराठी में काफी बार, लेकिन वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वीकनेस के कारण। जैसे सुग्रीव थे, उन्होंने वचन लिया था कि मैं 4 महीने में मेरे सारे बंदरों को 4 दिशा में भेजकर सीता के शोध में, खोज में प्रयास करूंगा। लेकिन इतने साल से भूखे थे। किसके भूखे थे? राजभोग नहीं मिला था, वनवास का उनको कष्ट मिला था, और वनवास का कष्ट समाप्त हो गया, राजा बन गए। राजा बनते हुए डबल उनको बेनिफिट मिल गया, तारा भी मिल गई और रुमा भी मिल गई। तो इसमें उन्होंने जो वचन दिया था उसको भूल गए, भोग में लग गए। तो भोग में लगने के कारण हनुमान जी उनको याद दिला रहे थे, देखो समय बीत गया, आपको जाना चाहिए। लेकिन जैसे हम कह रहे थे, जहां सुविधाएं आ जाती है वहां आलस आ जाता है। जैसे हमारे मंदिर में एक चेयर था, एक खुर्ची थी, और वो खुर्ची, उसको हम कहते थे जपा किलर। अगर वो खुर्ची पे बैठ जाओ कि बैठते ही जितना भी तेजी से जोर से जपा करने वाला, उसको हमने मंदिर के बाहर रखा था, ताकि जो कभी कभी लोग चक्कर लगा कर जप करते थे, प्रदक्षिणा करते करते, और थक जाते थे और चेयर पर आकर बैठ जाते थे। बैठने वाला पहले दूसरों को उठाता था, चल तू सो रहा है, उसको उठाकर फिर वो घूमने लगता था, फिर ये बैठ जाता था, और इसका जोर से जब चले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जो अभी उठकर चक्कर लगा रहा है, उसका एक चक्कर होने के पहले जब वो आता था उधर, ये देखता था ये सो रहा है ऑलरेडी। क्योंकि जहां कंफर्ट्स है वहां हम जागृत नहीं रहते। इसलिए प्रभुपाद जी जपा में काफी बार कहते हैं, बार बार, सिट स्ट्रेट। क्योंकि जैसे आश्रय मिल जाता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो ब्रह्मचारी टेक के बैठे थे, उनको तो शादी कर ले, तुमको टेक चाहिए ना, अगर आश्रय चाहिए ना, शादी कर ले। तो इस प्रकार से सुग्रीव महाराज, तो उनको इतना आश्रय मिल गया था भोग के लिए, हनुमान जी याद दिलाने पर भी जो बोलने में उस्ताद थे, बोलने में निष्णात थे, लोगों को कन्विंस कर सकते थे, ऐसे हनुमान जी उनको बोल नहीं पाए, उनको सुधार नहीं सके। केवल लक्ष्मण को आना पड़ा, बाण लेकर हिलाना पड़ा उनको। तो समझते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन आलसता के कारण जो करना चाहिए उसको कर नहीं पाते हैं। और है जो ऐसे लोग हैं, वो समझते हैं, जानते हैं, बोलते भी है, लेकिन कहेंगे हम नहीं करेंगे, हमको करना नहीं है। साफ साफ बोल देंगे हमको नहीं करना है। दे हैव द पावर, उनके पास ऐसी शक्ति है, भगवान ऐसी बुद्धि भी देते हैं, ऐसा ज्ञान भी देते हैं, जानकारी भी होती है, सारा शास्त्र को बोल भी सकते हैं, लेकिन उनका मत क्या रहता है कि हम नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास रखना है कोई बड़ी बात नहीं। किसी ने स्टैटिस्टिक्स निकला था अमेरिका में कि 70% लोग भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी देखो क्या हालत है। विश्वास रखना ये बड़ी बात नहीं, इसके बारे में बोलना बड़ी बात नहीं, लेकिन यह निर्धार करना कि मुझे नहीं करना है, यह क्या है? राक्षसी वृत्ति है। अगर हम यहां भक्त लोग विराजमान है, इसलिए हम साफ साफ बोल सकते हैं कि कर्ण की वृत्ति राक्षस की वृत्ति थी, दुर्भाग्यवश। राक्षसी वृत्ति क्या? जानना, बोलना, लेकिन यह निर्धार रखना कि मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। इसलिए जो जो निष्णात भक्त है, जो भक्ति के तत्व को जानते हैं, भावनात्मक नहीं बनते। एक होता है कि मेरी भावना, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। जो आत्म साक्षात्कार इसको पर निर्भर नहीं कि मुझे अच्छा है और आपको अच्छा नहीं। कोई कह सकता है कि मुझे पीला रंग अच्छा लगता है, कोई कह सकता है कि मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, कोई कह सकता है कि मेरा मुझे हरा रंग अच्छा लगता है। यहां आपके लिए एक ऐसा अवसर है, फैसिलिटी है कि आप चूज कर सकते हो कौन सा भी कलर आपको अच्छा है, उसको स्वीकार करो। ऐसे सुविधाएं है, लेकिन ऐसे कुछ जीवन में स्थितियां होती है, ऐसे प्रसंग होता है, ऐसे कुछ कर्तव्य होते हैं, ये चॉइस का कोई बात नहीं है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ चॉइस, इसको करना ही है। इसको नहीं करने से क्या होगा? विपरीत परिणाम हो जाता है, ऐसा करना पड़ता है। जो जिस देश में निवास करेगा वो जानता है कभी कभी ये नियम मुझे पसंद नहीं है, मुझे पालन नहीं करना है, लेकिन नहीं पालन करने से क्या होगा? जैसे हमारे एक भक्त जो लंदन में निवास करते हो कह रहे थे कि मैं इतना आलसी था, मैं जानता था कि वहां ब्राउन पैच होता है जब आप गाड़ी चलाते हो, वो केवल बस के लिए होता है, वहां से जाना नहीं है, लेकिन उसी लेन में मैं चला रहा हूं और वहां से अगर दूसरे लेन में आओ, अरे इतना कौन मगजमारी करेगा, मैं उसी के ऊपर जाता था, उसी लेन पे जाता था। तो उसी लेन पे जाने से तुरंत आपको नहीं पकड़ेंगे, वहां सिस्टम क्या है कि आपको बिल आ जाता है, रिसिट आ जाती है, आपका कार नंबर, किस समय आप ड्राइव कर रहे थे, तो कार वो कार्ड मिलता है रिसिट, और उस पर लिखा रहता है आ जाओ और 40 पाउंड आप भेंट दे दो हमें, 40 पाउंड्स भेंट, क्योंकि रेड कार्पेट पे आप ड्राइव कर रहे थे, देना पड़ता है। ये चॉइस नहीं है। अगर आप इन जो नियमों को तोड़ दोगे जबरदस्ती से, जब उसका परिणाम आएगा, उसका विपरीत परिणाम आएगा, और उस विपरीत परिणाम आने के लिए अनुकंपा की प्रतीक्षा करोगे, अनुकंपा की इच्छा करोगे, ओ सोसाइटी शुड फील फॉर मी, समाज मेरे प्रति अनुकंपा दिखानी चाहिए, इसकी प्रतीक्षा करना और लोग इनके प्रति अनुकंपा दिखाना, दोनों ही एक पाप वृत्ति है। राक्षस वृत्ति को कल्चर करना, भक्ति रसामृत सुंद में रूप गोस्वामी कहते हैं अनुशीलनम, भक्ति क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट है, एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि क्रियाशीलता, अनुशीलनम। तो राक्षसी वृत्ति ऐसा ही है, जैसे प्रेम भक्ति अपने आप नहीं आती, अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, सडनली आप प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। महाप्रभु के समय हुआ था, अभी हमें ज्ञान है, उसको उसका ज्ञान दिया गया है, और उप गोस्वामी कहते इस प्रकार से एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, जैसे प्रेम को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, वैसी द्वेष को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया है। इसको लोग स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं, ये अचानक कोई राक्षस नहीं बनता, समाज उसको राक्षस नहीं बनाता, वातावरण उसको राक्षस नहीं बनाता, वो बन जाते ऐसा वो अपने मन में एक प्रकार का दृढ़ निश्चय करते। इसलिए संजय जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, देखो तीन प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, या कोई भी एक्शन हो वो किसके कारण होता है? तीन कारण के लिए होते हैं, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को। एक है ईश्वर इच्छा के कारण, भगवान की इच्छा होती है उस इच्छा के कारण लोग ऐसा कर्म करते हैं। दूसरा है संजय कह रहे हैं, संजय व्यास के शिष्य है और कहते हैं दूसरा है अपने पूर्व कर्म के कारण विवश होकर वो ऐसे कार्य को करते हैं। देर बाउंड अपने पूर्व कर्म के कारण, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जिसे तीखा खाना अच्छा लगता हो, मिर्च मसाला अच्छा लगता हो, अगर उसको आप सात्विक आहार दोगे, साफ चावल, बाद में सिंपल दाल और थोड़ा सा घी देने से उसे संतुष्ट नहीं होगा, वो अपने किसे से मिर्ची पाउडर निकालेगा। कभी कभी लोग अपने किसे में चिल्ली और मिर्च पाउडर लेकर आते हैं और मसाला लेकर आते हैं, वो दाल का कलर बदल देते, चावल का कलर बदल देते और उनकी आंखों से आंसू आनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। जैसे एक बार हम लोग मायापुर में थे, फिर हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने पूछा झाल मुड़ी खाओगे? झाल मुड़ी, झाल मुड़ी यानी कि वाला महाराज जी झाल मुड़ी नहीं चाहिए हमको, हमको सॉफ्ट मुड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा झाल मुड़ी मतलब क्या है? बंगाल में झाल मुड़ी यानी कि इतनी तीखा होनी चाहिए, खाते समय आप ऐसा बोलना चाहिए, तब उसका मजा आता है। बोले इसका मजा है, देखो यू शुड बी स्वेटिंग, पसीना निकलना चाहिए और आपके कान से, नाक से, आंखों से, सब जगह से पानी निकलनी चाहिए। खाना खा नहीं पाओगे लेकिन फिर भी खाने की इच्छा होनी चाहिए, उसको कहते हैं झाल मुड़ी। झाल यानी कि अग्नि निकलना चाहिए सब जगह से। तो इसके लिए हम देखते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति को ये अपने आप नहीं आता, हो सकता है पूर्व कर्म के कारण। जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आए, वो भगवान की इच्छा थी, प्रभुपाद जी लिखते कि वो युद्ध करना चाहते थे कृष्ण विष्णु, इसलिए आए उनकी लीला में भाग लेने के लिए। और कई राक्षस अपने पूर्व कर्मों के कारण आते हैं। और तीसरा संजय बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं कि वातावरण, जो तुरंत इस अवसर पर आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्तों को जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सब कुछ हम पूर्व कर्म और ईश्वर इच्छा से हो रहा है। कभी कभी अब इस समय कुछ वातावरण को हम चूज करते हैं, मुझे इस वातावरण में जाना है। उस वातावरण में जाते ही वो वातावरण हमारे प्रति क्या करेगा? वो प्रभाव करेगा, सर्कमस्टेंशियल सराउंडिंग। वो सर्कमस्टेंशियल सराउंडिंग के कारण हम उस प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं। ये भी वो धृतराष्ट्र को कहते हैं। इसलिए वातावरण, वातावरण को ठीक रखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई प्रश्न कर रहा था कि वैल्यूज, वैल्यूज यानी कि क्या कहते हैं वैल्यूज को, मूल्य, मूल्य। हर एक कार्य करने में कोई मूल्य होता है और कुछ कार्य करने से कुछ मूल्य आ जाते हैं। वैल्यूज क्रिएट कल्चर, मूल्य एक संस्कृति को बनाती है और एक संस्कृति की मूल्य को बनाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कभी हम जानते हैं, कभी उसको जानते नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था पहले दिन, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमें क्या सिखाता है? खर्चा करो। पहले बच्चों को सेविंग्स करने के लिए पिगी बैंक दिया जाता था। यहां केवल सेविंग्स की बात नहीं हो रही, अरे आप, आपको जो कॉइन मिलेगा उसको बचाओ बचाओ बचाओ। और आजकल कहते हैं नहीं, खर्चा करो खर्चा करो। खर्चा करने में और पैसे को बचाने में एक वैल्यू आ जाता है। ये वैल्यू क्या है? इंद्रिय नियंत्रण और इंद्रिय अनियंत्रण। देखो हमें क्या सिखा रहा है कि इंद्रियों को नियंत्रण करो, कंट्रोल योर सेंसेस। सेविंग मीन्स कंट्रोल योर सेंसेस, स्पेंडिंग मीन्स लेट लूज योर सेंसेस। हमें समझ में नहीं आएगा लेकिन ये वैल्यू है, ये मूल्य है हर चीज पे। ऐसे ही बाह्यकारी कारण से हम कुछ करेंगे, कपड़ा पहने में एक वैल्यू आता है, एक मूल्य आ जाता है। तो हर एक कार्य में, हर एक संस्कृति में, हर एक व्यवहार में एक हम मौल्य बना लेते हैं नास्तिकवाद। एक बार हमारे मंदिर में धृतकर्म प्रभु आए थे, उन्होंने प्रश्न किया बच्चों को, ये प्रश्न उठता है, लोग प्रश्न उठाते हैं। धृतकर्म प्रभु उन्होंने काफी बुक लिखे, हिडन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस, मानव समाज का जो छिपा हुआ वैज्ञानिक समाज में इसको छिपा दिया गया है, इसका इतिहास क्या है। क्योंकि आधुनिक समाज जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम लोग सब बंदर से आए हुए, इसके पीछे कुछ मौल्य है कि नहीं। या भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में जब मैंने इसकी रचना की तब मैंने सारे जीवों को कह दिया यज्ञ करो, यज्ञ करने से क्या होगा, देवतागण प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से जब देवतागण और मनुष्य में आदान प्रदान होगा तो सारे सुविधाएं मिल जाएगी। तो उन्होंने प्रश्न उठाया धृतकर्म प्रभु ने, आप सब लोग विद्यार्थी हो, आपके आगे आगे जाकर बढ़ना है, आपको काम करना है, तो अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्वीकार करो या कृष्ण का सिद्धांत गीता में स्वीकार करो, इससे आपके जीवन में फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्यों, आपको काम करना ही है, यू हैव टू वर्क। तो आप कह सकते हो कि इस तत्व से मुझे क्या लेना देना है। अगर मैं वैज्ञानिक लोगों का सिद्धांत स्वीकार करूं या मैं गीता का सिद्धांत स्वीकार करूं, उससे मेरे जीवन में जो मुझे कष्ट करना है, जो काम करना है, वो तो बचेगा नहीं। वेरी पावरफुल। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसीलिए एक इतना सूक्ष्म है, जब आप नास्तिकवाद का सिद्धांत स्वीकार करोगे कि भगवान ने नहीं बनाया है, ये अपने आप हो रहा है, तब क्या होगा, आपको पाप पुण्य प्रतिफल भूत भविष्य इसको भूल जाओगे और इतने स्वार्थी बन जाओगे, ये मूल्य बन जाता है। ये मूल्य लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ क्या है, क्रिएशन इज मैकेनिकल। लेकिन इस क्रिएशन मैकेनिकल के पीछे इसका फाउंडेशन क्या है, मूल्य क्या है, कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, पाप पुण्य कोई चीज नहीं है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट, केवल जीते रहो जैसे आपको जीना है। परंतु जब इस सिद्धांत को स्वीकार करोगे, कृष्ण ने बनाया है, यहां आदान प्रदान की बात की जाती है, देवताओं की सेवा करने की बात की जाती है, तब वहां उत्तरदायित्व आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऋण की बात आ जाती है, कृतज्ञता की बात आ जाती है। देखो कैसे मूल्य बदल जाता है। इसलिए किसी चीज को भी जब हम स्वीकार करेंगे, अगर वो खाना हो, अगर सोना हो, अगर जप करना हो, कुछ भी हो, इट इज अ फिलॉसफी बिहाइंड। हर एक कार्य के पीछे एक मौल्य होता है और उस मौल्य को जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यवश जब लोग कर्ण चरित्र को पढ़ते हैं, अगर महाभारत, मूल महाभारत पढ़ो, या जिन्होंने अपने कल्पना शक्ति के द्वारा अपने भावनाओं को ऐसे बनाकर बड़े प्रतिभा दिखाकर जो चरित्र लिखते हैं, उस पात्र के प्रति अनुकंपा जागृत होना है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, इट इज बट नेचुरल। जैसे अगर उदाहरण दिया गया था, जब भारत और पाकिस्तान दो विभाग हो गए, उस समय अगर सोचो किसी का जो परिवार का व्यक्ति उस साइड पर है और आप यहां हो, और यहां आप होने पर आपके ही परिवार का कोई निकट का व्यक्ति आपके विरुद्ध युद्ध कर रहा है और आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है, इज फाइटिंग अगेंस्ट यू इन द बैटल, युद्ध में। मैंने बच्चों को प्रश्न पूछा, सोचो आप न्यायाधीश हो, यू आर जज, ये हमारे स्कूल में, तो मैंने खास करके बालिकाओं को पूछा, सोचो आप न्यायाधीश बन गई और आपका बच्चा मर्डरर बन गया, आपका बच्चा क्या बन गया, मर्डरर बन गया, देशद्रोही बन गया, और ये सिद्ध हो गया है और आपको निर्णय देना है, निर्णय क्या देना है कि जजमेंट पास करना है, निर्णय कैसे पास करोगे, आप पास कर पाओगे निर्णय को, ये स्वाभाविक है कि आपके पुत्र के प्रति आपको अनुकंपा होगी, लेकिन अब केवल माता के रूप में नहीं हो, आप कौन से रूप में हो बैठे उधर, एक न्यायाधीश के रूप में बैठे हो। तो यहां कौन सी भावना महत्वपूर्ण है, माता की भावना महत्वपूर्ण है या न्यायाधीश की भावना महत्वपूर्ण है? क्योंकि संबंध केवल आप और आपके बच्चे में नहीं है, ये वैयक्तिक संबंध है। अगर वैयक्तिक भावना जो समाज के भावना के विरुद्ध जाता हो तो आपको क्या करना चाहिए, सोचो। आपके अंदर अधिकार है कि आप प्रेम करना और किसी के प्रति अनुकंपा दिखाना, किसी के प्रति चॉइस दिखाना, आई लाइक हिम आई डोंट लाइक हिम, आपको वो अधिकार है। लेकिन ऐसा जो निर्णय आपका जो चॉइस, ऐसा अगर समाज के दृष्टिकोण से अगर धोखा दे रहा हो आपको क्या करना चाहिए? जैसे रामायण में आचार्यगण कहते हैं कि दशरथ महाराज जब आए कैकेयी के घर पे, उसके अंतपुर में आए, उन्होंने निर्धार कर लिया था कि भगवान रामचंद्र राजा बन जाएंगे, युवराज बन जाएंगे, ये समाचार वो देना चाहते थे। लेकिन उसके पहले ही क्या हो गया, दासियों के द्वारा कैकेयी को समाचार मिल गया है घर के नौकरानी से। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो गुप्त समाचार अगर सारे नौकरों को समझ में आता है तो क्या होगा, इसका विपरीत परिणाम होगा ही। और नौकर ने क्या कर दिया, कैकेयी की जो नौकरानी थी मंथरा, सुमंथरा नहीं थी वो, कुमंथरा थी, तो उसने सारा गलत कान भर दिया कैकेयी के। और जब कैकेयी के पास गए दशरथ महाराज, वो कोप ग्रह में थी, देखो कैसे कैसे घर होते थे रानियों के लिए, अंतपुर अलग रहना पड़ता था क्योंकि राजा को समझ में आता था अभी मेरी रानी का मूड है, उसके लिए अलग घर, और फिर अगर प्रेम है तो उसके लिए अलग घर, और कुछ मांगती है तो उसके लिए अलग, ऐसा अलग अलग कमरा था ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जाओ और उसके अनुसार व्यवहार करो। तो कोप ग्रह में सो गई थी, जमीन पर लेटी हुई थी, उसके बाद जाते हैं और उसको मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में वो कहते कि देखो ये मेरा निर्णय है, ये मेरा डिसीजन है कि आपको राम को वनवास भेजना होगा 14 साल के लिए, और मेरा पुत्र राजा बनेगा। तो इसके पहले, ये बोलने के पहले दशरथ महाराज डर डर के जाते उधर, पता नहीं ये क्या मांगेगी। ये जो रणचंडी है ये कैकेयी डांटती है, इसके प्रति मैं आकर्षित हूं, लेकिन ये क्या मांगेंगी पता नहीं, इसलिए वो बड़े सोच विचार के साथ जा रहे थे। लेकिन जाते ही कैकेयी को देखकर वो क्या कहते हैं, कैकेयी मांग ले जो चाहिए मांग ले, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप जानते हो कि वो कुछ भी मांग सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे जाकर उसको कहना क्या चाहिए आपको, अगर इस राज्य में किसको दंड देने के लिए योग्य है, जिसको फांसी में चढ़ाने के लिए कारागृह में रखा हुआ है, अगर आप चाहती हो कि मैं उसको मुक्त कर दूंगा, आई विल रिलीज हिम, और जो मुक्त प्रजा है जो घूम रहे, अगर आप चाहती हो कि इसमें से किसी को मैं फांसी पे चढ़ा दूं, उसको मैं फांसी पे भी चढ़ा सकता हूं आपकी प्रसन्नता के लिए। ये रामायण में ऐसे दशरथ महाराज कैकेयी को कहते हैं, और वो कहते हैं जो निर्धन है, जो गरीब है, उसको मैं धनी बना सकता हूं आपकी प्रसन्नता के लिए, और जो धनिक है उसका सारा धन हरण करके उसको मैं भिखारी बना सकता हूं, मांगो क्या चाहिए। और किसके नाम से मैं कह रहा हूं, राम के नाम पर मैं कह रहा हूं, यानी कि राम के नाम पर वचन लेना, कि फिर और भी अटक गए उधर, क्योंकि कई कई जानते थे कि राम आ जाएंगे तो उनको पूरा करना ही होगा। तो यहां बताया जाता कि जो नेता है, जो लीडर है, उसको समझना चाहिए कि वो केवल पूरे देश को उनके प्रतिनिधित्व किसके कर रहे, कई कई की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। यू कैन नॉट मेक सच ए डिसीजन, एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए जब आप समाज का आपका उत्तरदायित्व है, वैसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट डू दैट। आपका वैयक्तिक टेस्ट है, लेकिन वैयक्तिक टेस्ट, वैयक्तिक रुचि अगर समाज के रुचि के विरुद्ध जा रहा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने इस वैयक्तिक रुचि को त्याग करके समाज के जो भलाई के लिए जो है उसी को करना चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, जितने भी कवि है, जितने भी नाटककार है, जिन्होंने भी चित्र बनाया है, वो कर्ण का जो पात्र किस प्रकार से चित्रित करते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, उससे समाज में क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसकी जानकारी उनको नहीं है। मूल को पढ़ते नहीं है और मूल को न पढ़ने के कारण ऐसे एक महाभारत है, गुजराती महाभारत, ऐसे अलग अलग लोगों ने लिखा है। उस महाभारत में ऐसा लिखा है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, मैं सोचा मैं सिस्टमेटिक जाओ या कैसे जैसे आए वैसे जाओ, अभी तक मैंने निश्चय नहीं किया है। तो उस महाभारत में लिखा है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था कि जो सुशिक्षित लोग होते हैं वो इस चीज को देख नहीं सकते, तो कर्ण ने क्या कर दिया, अपने मुंह को घुमा लिया, वो देख नहीं पाया। बोला दुर्योधन तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुंह को घुमा लिया, वो देख नहीं पाया, अपने मुंह को वो नीचे डालने लगा, उसको बहुत वेदना हो रही थी। मुझे लगता है भूल गए हो, वो विदुर लिखना चाहिए था, वो कर्ण लिख लिया। लेकिन लिखा तो है कर्ण ने ऐसा किया। लेकिन अब महाभारत पढ़ोगे, जो नग्न करने की जो निर्णय, नग्न करना चाहिए इसको, इनके कपड़ों को उतारना चाहिए, ये किसने कहा, ये कर्ण ने ही कहा। वो कहता हमारा स्पष्ट मत है, इट इज नॉट कंफ्यूजिंग मत, करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप पढ़ सकते हो, कि मेरा स्पष्ट मत है, दासी होने के नाते, हमारे दास होने के नाते हम जिस प्रकार से इनसे व्यवहार कराएंगे वैसा इनको करना चाहिए, इसलिए इनके कपड़े उतार दो। तब पांडवगण सब अपने ऊपर का कपड़ा, जो ऊपर का कपड़ा है ये सम्मान परिवार का लक्षण होता है, ऊपर कपड़ा पहना सम्मान समाज का लक्षण होता है, तो उनका जो सम्मान है वो छीनना चाहते थे, तो पांडवगण तुरंत अपने सारे कपड़ों को उतार देते, ऊपर का कपड़ा, जैसे ऊपर का कपड़ा उतार दिया गया। इसलिए भगवान के सामने जब कोई आता हो, खास करके पुरुष लोगों के लिए, जब वो भगवान के सामने आते हैं, खास करके दक्षिण भारत में नियम है, उनको क्या करना होता है कि अपने ऊपर का जो कपड़ा है उसको निकाल कर ही भगवान के सामने प्रणाम करना है, कि मैं तुच्छ हूं, मैं नीच हूं, मैं दीन हूं, मैं कोई प्रतिष्ठित नहीं हूं, मैं क्रिमिनल हूं और आपके सामने मैं शरण जा रहा हूं, ऐसी याचना करनी पड़ती है। तो अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे कि कर्ण में क्या क्या गुण थे और लोग क्या कहते, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। लोग कहते कि समाज ने कर्ण के प्रति बहुत अन्याय कर दिया, समाज के कारण, अगर उसके हाथ से कुछ भी गलती हो गई वो गलती किसके लिए हो गई, समाज के कारण, समाज ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पहला आक्षेपण है। और दूसरा, कुंती उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कैसा उसका पत्थर का दिल था, उसने कर्ण के साथ ऐसा व्यवहार किया, कभी जब उसको त्याग दिया और बाद में त्यागने के बाद कितने साल तक उसको बता ही नहीं रही थी कि तू मेरा पुत्र है, उसको कभी ऐसा अवसर ही नहीं दिया। और तीसरा, जब कर्ण बड़े दृढ़ता के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था, उसका निश्चय अटूट था, अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला था, अर्जुन को निश्चित रूप से परास्त करने वाला था, पांडवों को मारने वाला था, ऐसे कर्ण जब तैयारी कर रहा था, तब कुंती जाकर उसको क्या कहती है कि हे कर्ण तू मेरा पुत्र है, उसको वीक बना दिया। ये अज्ञान के कारण वो दृढ़ था, लेकिन ये ज्ञान आते कि पांडव मेरे बंधु है, पांडव मेरे बंधु है, उसे क्या हो गया, वो दुर्बल बन गए। वो दुर्बल बनने के कारण युद्ध में जितने बार भी कर्ण परास्त हो गया, वो परास्त किसके कारण हो गया, नहीं कि वो कम था, वो तो सबसे महान था, लेकिन बार बार सोचकर, अरे कुंती के पुत्र है, इनको मैं मार नहीं सकता, तो इस दुर्बलता के कारण वो हार गया। नहीं तो उसको कौन हरा सकता है। ये कुंती ने बहुत बड़ा उसके प्रति अपराध कर लिया, ये दूसरी बात। और तीसरा, द्रोण अगर कोई उत्सुक है, सीखना चाहता है, गरीब है, लेकिन उसके अंदर योग्यता है सीखने के लिए, किसी कॉलेज में जाता है, आजकल भी होता है, अगर कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ाई करने की इच्छा है, अगर कोई धनी के पास चला जाए, प्रूव करे कि मैं होशियार हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, देखो मेरे मार्क्स, मुझे मदद करो, तो कोई भी कितना भी बड़ा क्रूरी क्यों ना हो, अगर कोई विद्या सीखना चाहता है, निश्चित रूप से उसको क्या करते, उसको फैसिलिटेट करते, चलो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, उसको पढ़ाते। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया, कर्ण को रिजेक्ट कर दिया, उसको पढ़ाए नहीं, तो इधर उधर भटकता हुआ, इसके पास उसके पास, फिर परशुराम जी के पास जाकर झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता देखो, इसको तो देखो, झूठ बोला तो भूल जाओ, लोग कहते हैं पढ़ाई करने के लिए उसने क्या नहीं किया। इसलिए वहां के शिक्षक गण भी उसके प्रति अत्याचार कर दिया, उसको पढ़ाई करने में मदद नहीं किया। और द्रौपदी के विवाह के साथ उसके साथ भी ऐसा हो गया, उसका सबके सामने निंदा करने लगी द्रौपदी। इसलिए स्वाभाविक है कि द्रौपदी ने उसको सबके सामने निंदा की थी, तो समाज ने उसको खराब कर दिया, इसलिए उसने भी वैसे ही प्रतिक्रिया की, उसका भी समाज में निंदा कर दिया, तो उसमें उसकी क्या गलती है, व्हाट इज दिस फॉल्ट, कर्ण भक्त लोग ऐसा कहते हैं। फिर दूसरा और छठा है, उसी समय जब मैच चल रहा था, जब कर्ण आया उधर, जब द्रोणाचार्य ने सब बच्चों को पढ़ाया और कर्ण भी आ गया बिना बुलाया, आया और वो भी कहा मैं भी प्रदर्शन करूंगा, तब कृपाचार्य ने कहा बताओ आपका कुल कौन सा है, किस कुल से आए हो, किस राज के पुत्र हो, भरी सभा में उसकी निंदा कर दी। और जो भीम है, जो जातिवाद फैला रहे थे, ऐसा लिखा हुआ है, मैं जो भी बोल रहा हूं ऐसा आप देख सकते हो, लोगों ने किताब लिखा है, भीम जातिवाद के अनुकूल थे, उन्होंने उस भरी सभा में जानते हुए भी कि कर्ण इतने महान है, उन्होंने कहा सूत के पुत्र सन ऑफ अ कारपेंटर, तेरे लिए कौन लाया इधर, जा चाबुक पकड़कर रथ चला, ऐसे भीम ने कर्ण की निंदा की। परंतु दुर्योधन जातिवाद के विरुद्ध थे, प्रतिभा ही सबसे महान है, देखो दुर्योधन कितने महान है, उन्होंने क्या कर दिया, जहां भीम उसको जाति के नाम से भगाना चाहते थे, ऐसे कर्ण को दुर्योधन तुरंत राजा भी बना दिया अंग देश का। तो कौन है इसमें महान, दुर्योधन महान है या भीम महान है? और जो कृष्ण, कितने बार उसको धोखा दिया, प्रलोभन कर रहे थे, कितने बार प्रलोभन कर रहे थे, शांति दूत बनकर आए और शांति नहीं होगी, सीधे रथ पर बैठकर चले जाते, इसको देखते हैं दुर्योधन धृतराष्ट्र, बोले कहां जा रहे हो कृष्ण, कर्ण को लेकर, कर्ण को अपने रथ पर बिठाते, उसको जाकर समझाते भगवान श्री कृष्ण, वहां उसको कहते देख तू कुंती का पुत्र है, आ जा राज्य करने के लिए। राज्य करने से युधिष्ठिर महाराज युवराज बनेंगे, तू राजा बनेगा, और अर्जुन जिसे तू इतना द्वेष रखता है वो तेरे लिए चामर ढुलाएगा, इससे बढ़कर क्या चाहिए, सारे अंधक वृष्णि सबके सब आपको नमस्कार करेंगे, कर्ण आ जाओ राजा बनो। देखो कितना बड़ा प्रलोभन दिया, ऐसा प्रलोभन आज के राजकारणी कौन छोड़ सकता है। देखो कर्ण कैसे राजकारणी था, उसने क्या कर दिया, उसको ठुकरा दिया, बोला लॉयल्टी इज लॉयल्टी, यू कांट बाय मी, आप मुझे खरीद नहीं कर सकते हो, कि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से जो इंद्र भी आ गए, किस प्रकार से ब्राह्मण के रूप में उन्होंने उसके कर्ण और कवच ले लिया जो अवैध था, उसके बारे में हमेशा युधिष्ठिर महाराज सोचते थे, एक कवच के कारण हमारे कर्ण मारे नहीं जाएंगे तो मेरा अर्जुन मारा जाएगा, उनको नींद नहीं आती थी। वो बार बार इसके बारे में बोलते भी है, मार्कंडेय ऋषि को बोलते, व्यासदेव जी को बोलते, काफी बार युधिष्ठिर महाराज की कर्ण के डर से कि अर्जुन मारा जाएगा, उनको नींद नहीं आती थी। देखो कितने युधिष्ठिर महाराज डरे हुए थे। ये पूर्व पक्ष का सिद्धांत है कि कर्ण के साथ ऐसा हुआ, और इसके उत्तर में बाद में इसकी हम चर्चा करेंगे। आचार्यगण और वैष्णव ने कहा है कि कर्ण ये बहुत एरोगेंट था, दर्प दंभ अहंकार उसमें भरा हुआ था। ये गलत है या सही है ये हम पढ़ेंगे। और तीसरा, धोखा देने में सबसे बड़ा निष्णात था, बिट्रेल। बिट्रेल यानी कि कहना कि मैं करूंगा सब कुछ, चिंता मत करो, मेरे पीछे चलो, और खुद पीछे से भाग जाना। बिट्रेल करना ये उसका एक सहज स्वाभाविक गुण था। जब आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और आपके लिए ही किसी ने कोई निर्धार लिया कि चलो हम करेंगे ऐसा करके कि आप बोल रहे हो, और जब काम अधूरा हो जाता है, आप जान जाते कि अभी मेरा जियान चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, और बाकियों को छोड़कर, जैसे बंदर, आपने देखा होगा बंदर जब अपने प्राण गमाना पड़ती है, बढ़ता है मां को, वो बच्चों को ले जाते हैं, जब तक प्राण नहीं जाएगा तब तक अपने बच्चों का देखभाल करती है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और जैसे उसको लगता कि अभी मेरा जान चला जाएगा, मैं डूब जाऊंगी, वो क्या करेगी, अपने बच्चों को खींचकर नीचे लाती है और उसके ऊपर पैर रखकर वो नदी पार कर देती है। ये हो गया कि दूसरों का मदद करो, सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसे उनकी सेवा करने से मेरा जान जा रहा है तो उनसे सेवा ले लो, उनको मार दो और पार करो। बिट्रेयल, द्रोह करना। और तीसरा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति योग का या आध्यात्मिक ज्ञान का, कि दोष किसको लगाना है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, कर्म सिद्धांत, जो कर्म सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है वो नास्तिक है। गीता में, भागवत में हम देखते हैं, जो कर्म सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा, वन में बिलीव इन गॉड, एक सोच लगता है मैं भगवान के प्रति विश्वास रखता हूं, लेकिन कर्म को मैं स्वीकार नहीं करता, ये गलत है कि मैं मेरे पूर्व जन्म के कारण। जैसे एक बार हमारे लंदन में एक डिवोटी पुस्तक वितरण कर रहे थे और उनको कोई दो क्रिश्चियन जो प्रचारक मिले, ये दो स्त्रियां थी, वो आ गई और उन्होंने इसको देखा, ये अमेरिकन ब्रिटिश लड़का था, पुस्तक वितरण कर रहा था, उन्होंने उनको पुस्तक दिया, प्रभुपाद जी की किताब दिया। वो लड़की बोलने लगी, व्हाट, हाउ कैन यू फॉलो दिस हिंदू फिलॉसफी, आप हिंदू सिद्धांत को कैसे पालन कर सकते हो, जहां लोगों को ऐसा कहा जाता है सारा तुम्हारा पूर्व कर्म है, यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मा, यू आर बॉर्न इन अ बैड फैमिली बिकॉज ऑफ बैड कर्मा। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसके ऊपर कोर्ट केस है, और जिसको विद्या नहीं है, जो गरीब है, और जिसको बहुत सारे बीमारियां है, बोले पूर्व जन्म का फल है, कर्म है। ये सुनना बहुत कठिन लगता है, नो नो इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए हम देखते हो काफी हॉस्पिटल में लगा रहता है, कुष्ठ रोग आपके पाप का फल नहीं है, डॉक्टर लोगों का पाप का फल है, बोल रहे ये आपका पाप का फल नहीं है, ये बीमारी उसको दूर कर सकते है। केवल बोलना है, ये गलत है कि केवल बोलना के पाप का कर्म है, आपका पाप का फल है। शास्त्र डायग्नोस भी करेगा लेकिन मेडिसिन भी देती है। जो कर्मठ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, केवल डायग्नोस करेंगे, तू बीमार है, तुझे कैंसर हो गया, अभी तू मरने वाला है, तेरे लिए कोई चांस ही नहीं है, मेडिसिन कुछ नहीं तेरे लिए, मर जा तू। तो ऐसा डायग्नोस करना वो क्या है, वर्स देन यू नो डाइंग, मरने से बेकार है। तो इसलिए कई ब्राह्मणों ने, दुर्भाग्यवश सब ब्राह्मण नहीं, वो लोग ने इस कर्म सिद्धांत को क्या कर दिया, केवल इसको बोलते थे भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी कर्म सिद्धांत को बोलते, लेकिन किस प्रकार से, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत छोटा है, लेकिन मेडिसिन ऐसा जबरदस्त है, इसको लेने से समस्या दूर हो जाएगी। हम समस्याओं को तभी बोलना चाहिए जब हमारे पास सॉल्यूशन है, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। नेवर टेल्स प्रॉब्लम अनलेस यू हैव सॉल्यूशन। किसी को समस्या मत बोलो जब तक आपके पास सुलझाव नहीं है। एक कृष्ण की तरीका है, कृष्ण जब दंड देते हैं, पनिशमेंट भी देना हो, किसी को दंड भी देना हो, आपके अंदर वैसी शक्ति भी होनी चाहिए कि रिवॉर्ड करने के लिए। आप केवल दंड देने में इस निष्णात हो, लेकिन साथ साथ आप किसी को बहुमान नहीं दोगे, बख्शीश नहीं दोगे, देन यू आर नॉट गुड पनिशर। ऐसे पनिशमेंट करने वालों को मैंने कहा तो सुना है, पढ़ा नहीं, आज तक देख रहा हूं, बहुत पहली बार मैं सुना था। किसी भक्त ने कहा था कि जो हमेशा क्रोध करते हैं, दंड देने में निष्णात है, कुछ भी हो दंड दो, कुछ भी हो मारो, कुछ भी हो फाइन करो, और कभी भी किसी को अगर प्रेम से कुछ भेंट देने की इच्छा उनको होती नहीं है, बोले ऐसे सारे दंड देने वाले यमलोक में यमराज के दूध बन जाते हैं, इंक्लूडिंग डिवोटीज। जो दंड देने में निष्णात है, शाप देने में निष्णात है, लेकिन रिवॉर्ड नहीं कर सकते। कृष्ण ऐसे नहीं है। जिस समय भूरिश्रव के साथ जब युद्ध चल रहा था, भूरिश्रव ने सात्विक के कान, उसके जो बाल पकड़कर सात्विक की थक गए थे, उनको खींच खींच कर लेके आ रहे थे, और उनके छाती पर उसने पैर रख दिया। ऐसा युद्ध नहीं करना चाहे था, और ऐसा हो रहा था तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन देख उधर क्या हो रहा है, तेरा शिष्य ऐसे हालत में, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको बचाओ, कुछ तो करो। तो अर्जुन का व्रत था कि उसके इर्द गिर्द जो भी उसके जो अंग रक्षक है, उसको बचाने वाले अंग रक्षक है, अगर उनके प्रति कोई धोखा आ जाता है, उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो अर्जुन ने बाण लेकर, जैसे ही भूरिश्रव का हाथ ऊपर हो गया था, वो सात्यकी का सर निकालने वाले थे, तो अर्जुन ने क्या कर दिया, उसको हाथ को ही उड़ा दिया। सात्यकी ने देखा हाथ ही गायब हो गया, भूरिश्रव ने देखा हाथ गायब हो गया, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां अर्जुन खड़े। तो अर्जुन की निंदा करने लगते कि अर्जुन ने कैसे किया, आपने, आप युधिष्ठिर महाराज को जाकर क्या बोलोगे, आप तो धार्मिक हो, आपके भाई धार्मिक है, उनको क्या जवाब दोगे कि उन्हें आपने ऐसे कर दिया, ये गलत हो गया। तो अर्जुन ने कहा, देखो वो मेरा अंग रक्षक है। ये केवल महाभारत में होता था कि अंग रक्षक को बचाने वाले स्वामी भी बचाते थे, आजकल के अंग रक्षकों को मरना पड़ता है, उनके स्वामी नहीं बचा पाएंगे। यहां अंग रक्षक अपने स्वामी की सेवा करता था, और उसका स्वामी जब उसका अंग रक्षक जब धोखा में चला जाता था, वो उसको भी बचाने के लिए तैयार था। तो अर्जुन ने था, वो मेरा अंग रक्षक है और मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा बॉडीगार्ड होने के कारण वो मेरे अंग के समान है, तो मैंने क्या कर दिया, केवल मेरे अंग की रक्षा की है। और दूसरी बात यह है कि भूरिश्रव जी कि मेरा यह व्रत है कि जो मेरे इर्द गिर्द मेरे से रक्षित है, अगर मैं उनकी रक्षा नहीं करूं तब क्या होगा, मेरे से बहुत बड़ी अपराध, मेरा बड़ा अपराध हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको बचाया। फिर भूरिश्रव उनको डांटने लगता, मैं जानता हूं तो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि तूने क्यों ऐसा किया, क्योंकि तेरा बुरा संग है। बुरा संग किसके साथ है, कृष्ण के साथ है, ऐसा महाभारत में लिखा है कि बैड एसोसिएशन, गलत संघ के कारण आपने ऐसा किया है, नहीं तो आप ऐसा नहीं करोगे। मैं आपके प्रति पूरा विश्वास रखता हूं, आप धार्मिक हो लेकिन ये अधर्मी है, देखो इसके कारण ऐसा किया, ऐसे वो कहता है। तब फिर से अर्जुन कहते, भूरिश्रव मुझे क्षमा कर दो, ये जो क्षत्रिय क्षत्र धर्म है, ये ऐसा धर्म है, इसमें बहुत सारे क्रूर कर्म करने पड़ते हैं, आप तो इतने बड़े महात्मा हो, महात्मा होने पर भी मुझे आपके ऊपर आक्रमण करना पड़ा, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, और यही प्रार्थना करता हूं कि आप उस लोक में चले जाओ जहां उष्णार जो शिवी महाराज निवास करते हैं, उस लोक में चले जाओ। अब भूरिश्रव कौन थे, भूरिश्रव एक वैष्णवी थे, वैष्णव होने के नाते नियमित रूप से महाउपनिषद नामक जो उपनिषद है वहां के जो मंत्र है, द्रोणाचार्य ने इस मंत्रों को गाया था मृत्यु के समय, और भूरिश्रव नियमित रूप से इस मंत्र का जप किया करते थे, वो नारायण की पूजा करते थे। तब उन्होंने जब यहां कृष्ण को डांटा केवल वातावरण के कारण, कभी कभी भक्त आपके जीवन में कुछ समस्या बहुत खड़ी हो जाती है, वो जाकर कृष्ण को डांटते भी है कि क्या मैंने तेरी इतनी भक्ति कर ली और तू ऐसा कर दिया मेरे साथ। लेकिन ऐसा बोलने पर भी अपना जो साधना भक्ति उसको छोड़ते नहीं है। हमने ऐसा अनुभव भी किया है लोगों के साथ, वो डांटेंगे भगवान को लेकिन अपना सोला माला ठीक से करेंगे, दैट इज वेरी गुड। तो भूरिश्रव ने क्या किया, कृष्ण को डांटा क्योंकि अभी वो मारने वाले थे, उनका पूर्व जन्म का जो पहले उसके परिवार का जो फैमिली सूड होता है ना, लोग गांव में दो दो परिवार के लोग झगड़ते हैं, एक 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 जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, बाप मरता रहता है और बच्चों को बोलता है देख ये सारा कोर्ट का पेपर है, युद्ध चालू रख। वैसे इनके परिवार में ऐसा कुछ संघर्ष हुआ था, तीन परिवार से संघर्ष चालू था भूरिश्रव और सात्यकी परिवार में। तो अपने परिवार का वो शान बचाना चाहते थे, तब तक उसका हाथ निकल गया, इसलिए वो गुस्से हो गए कृष्ण के प्रति। तो अर्जुन ने उनको शुभकामनाएं दी और कृष्ण ने क्या कहा, देखो ये भगवान है, दंड देने में निष्णात लेकिन दंड से बढ़कर जब भेंट देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं वो महान है। इसलिए कृष्ण जो कुछ भी करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज परफेक्ट, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने भूरिश्रव को कहा, उसके साधना में जो निष्ठा थी उसको देखकर भावना में थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन साधना में जो निष्ठा थी, मरो लेकिन मैं साधना नहीं छोड़ूंगा, हाथ टूट गया है लेकिन बैठ गए मंत्रों का जप करने हेतु। तब भगवान कृष्ण ने भूरिश्रव को कहा, पढ़ सकते हो महाभारत में, भगवान ने कहा हे भूरिश्रव कि मैं आपको उस स्थान पर भेजना चाहता हूं जो विमला लोका, जहां का लोग विमल है उसमें कोई कलमश नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित लोग है, और जहां मैं गरुड़ पर निवास करता हूं, गरुड़ पर आरूढ़ होता हूं, वैसे ही तुम भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर उस लोक पर चले जाओ। कहां भेज रहे भगवान उन्हें, कहां भेज रहे, वैकुंठ की ओर भेज रहे। अरे अगर आपका हाथ निकल जाए उसके बदले में वैकुंठ मिलेगा, क्या भगवान को डांटोगे, आपने मेरा हाथ ही निकाल लिया, अरे तो मैं को वैकुंठ भेज रहा हूं लेकिन हाथ क्यों निकाला, ये ठीक नहीं। हाथ क्या, अगर शरीर भी निकाल दिया उससे क्या जाएगा, अगर भगवान आपका शरीर निकाल देंगे लेकिन उसके बदले में वैकुंठ भेज देंगे और उसके लिए प्रश्न करना, ये ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ, आपने मेरे को मार दिया इतना जल्दी। हाल ही में हमारे जो दादर में जो रथ यात्रा होती है, मतलब कई बच्चे लोग इकट्ठा कर रहे, मंदिर से कुछ सपोर्ट नहीं लेते हैं, मंदिर के जो निष्णात मैनेजर्स लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, कई विद्यार्थीगण और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसे रथ यात्रा को करते बॉम्बे में, न तो ऐसा राला गिरीदारी का होता है, न तो चौपाटी का होता है, न तो झू का होता है, कि एक दिन में 1,10,000 लोगों को प्रसाद खिलाता है। लास्ट टाइम 1,10,000 लोगों ने प्रसाद खाया उस रथ यात्रा में, एक भी ब्रह्मचारी इस मैनेजमेंट में रहता है, कोई भी जो बड़े बड़े निष्णात मैनेजर इसमें भाग नहीं लेते, ये लोग एक महीने के अंदर पूरा जान लगाकर दिन रात काम करते हुए सेवा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और रथ यात्रा करते हैं। सोचो 1,10,000 बॉम्बे में रथ यात्रा के लिए आना, इतने लोग माइकल जैक्सन के रॉक शो में भी नहीं आए थे, जब वो आया था इतने लोग नहीं आए थे। तो उस रथ यात्रा में ये लोग भाग लिए, और जिनके घर में ये जगन्नाथ जी की ड्यूटी है उनका घर इतना छोटा है, जब भोग लगाना पड़ता है भगवान जगन्नाथ जी के लिए तो कर्टन बंद कराने की घर से बाहर जाना, वो घर की जो माता थी उसको भोग लगाने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता था। तो उसकी भी बहुत सुंदर कहानी है जगन्नाथ जी की, कैसे आए हो, हर शनिवार 6 साल के लिए छह साल के लिए ये माता ने कई उसके सहेली आ जाती थी किटी पार्टी करने के लिए ने जगन्नाथ के लिए भोग बनाने के लिए हर शनिवार के दिन 56 भोग लगा देते 656 आइटम हर शनिवार के दिन। कहां से इंग्रेडिएंट लाते थे? उनके लड़के का तनखा बहुत कम था लेकिन फिर भी इतने उत्साह के साथ 56 भोग लगाना और उसके घर पे पांच पांच करके लोग आते थे प्रसाद खाने के लिए और सबको पूरा भोजन खिलाती थी। 6 साल तक बनाई और हाल ही में उनका मृत्यु हो गया, उनको कैंसर हो गया था। लेकिन मरते समय इतने सारे भक्त लोग आ गए उनके घर पे और देखो भगवान कैसे, अगर कोई सिंपल है साधारण जीवन जी रहा है लेकिन निष्पाप है, भक्ति कर रहे हैं प्रेम से, किसी स्थान की आशा नहीं करते, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, मुझे टेंपल कमांडर बनना है, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे जीबीसी बनना है, इसके लिए भक्ति नहीं कर रही थी, वो जानती थी मैं तो क्या है, मुझे 16 माला जहां करना भी कठिन है लेकिन मैं जगन्नाथ जी की सेवा करती हूं प्रयास करके। कभी उसका किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, किसी अवार्ड नहीं मिला उसको, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी देख रहे थे, खा रहे थे। मृत्यु के समय तक उसकी चेतना पूरी, उसकी चेतना वैसे की वैसे ही थी। जगन्नाथ जी महाराष्ट्र होने के नाते वो विट्ठल के साथ भी उसका आकर्षण था, हरे कृष्ण बोल रही है, जगन्नाथ जी बोल रही है और विट्ठल बोल रही है और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं और लेटी हुई है और हाथ ऊपर कर रही है। सोचो ऐसा करते करते भक्तों के बीच में कीर्तन सुन रही है, बोल रही है और थोड़े ही क्षणों के लिए उसकी चेतना लुप्त हो गई और उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो कोई माताजी एक किसी कार्यक्रम में प्रश्न कर रही थी, प्रभु जी तितर इतकी सेवा करो तो दिमाग कहां मिली थी, ये का प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि अगर इतनी सेवा कर रही थी तो मर कैसे गई? ये ऐसे प्रश्न हो गया पूरा रामायण सुनने के बाद पूछना सीता और रावण का क्या संबंध है। अरे मरना ही इस प्रकार से मरना, कौन ऐसी अपेक्षा नहीं करेगा, कौन अपेक्षा नहीं करेगा? तो मर रही है लेकिन देखो चेतना कैसी है उसकी, कि जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होगा वैसी चेतना है। कृष्ण का चिंतन कर रही है, राम का चिंतन कर रही है, विट्ठल का चिंतन कर रही है, जगन्नाथ जी का चिंतन कर रही है 6 साल तक। एक बार भी शनिवार के दिन उसका 56 भोग मिस नहीं हुआ, हर शनिवार के दिन। और इतने सारे भक्त लोग जाकर वहां वो प्रसाद खाने के लिए जाते थे, कितने सारे लोग, छोटा सा कमरा, भोग लगाओ बंद, घर के बाहर चले जाओ भोग लगाने के लिए। तो कितने भगवान रिवार्ड देने में निष्णात है। तो भूरिश्रव को भी ऐसा भेंट भगवान ने दिया, चले चले जाओ मेरे धाम में, मुझे गाली दे रहे हो कोई परवाह नहीं, कोई समस्या नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप साधना तो कर रहे हो, बैठ गए भूरिश्रव, गाली दिया और बैठ गए, ध्यान लगाया और किसकी चिंतन कर रहे हैं, किसका चिंतन कर रहे हैं, उसी विष्णु का चिंतन कर रहे हैं। ये देखकर कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी जो भावना है वो यूनिवर्सल भावना के विरुद्ध हो फिर वो शास्त्र के विरुद्ध चला जाता है। इसलिए कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है विक्टिम कॉन्शियसनेस कि मेरे साथ समाज ने ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, बार बार अपने वातावरण को कोसना, अपने इर्द गिर्द लोगों को कोसना, लेकिन एक बार भी नहीं सोचना कि मेरी गलती क्या हो गई। जब आप अपने समस्याओं का जो बीज है, जो मूल है, उसको बाहर देखते हो, आप नास्तिक बन जाते हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं व्हेन यू बिकम एंग्री, जब आप क्रोध दिखाते हो आपके कर्म का जो उपकरण है, व्हेन यू बिकम एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्म देन यू कॉम्प्लिकेट योर कर्म, आप अपने कर्म को और क्लिष्ट बना देते हो। इसलिए ब्रह्मा जी भागवतम में कहते हैं कि जिसको कृष्ण की कृपा और ठीक ज्ञान प्राप्त करना हो, उस धाम को प्राप्त करना है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो क्या कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतामिपागम। वो कहते कि हाथ जोड़कर ऐसा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा भगवान को चुनौती नहीं दे सकते हो। हाथ जोड़कर जो भी उसके जीवन में आ रहा हो, एक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से, बाह्यकारी दृष्टिकोण से हमें प्रयास करना चाहिए। वैदिक धर्म ये नहीं कहता, कभी कभी लोग इसका भी इतने सारे कंफ्यूजन है, क्या वैदिक धर्म दैववाद कहता है या कर्मवाद कहता है। दैववाद करने से क्या होगा, लोग आलसी बन जाते हैं, अरे सब कुछ भगवान करने वाला है तो मुझे क्या करना है। जब वेदांत का अतिरेक हो जाता है, अतिरेक वेदांत भी गलत है। अतिरेक वेदांत गलत कैसा है, जैसे जब दुर्योधन, एक महाभारत में नहीं है लेकिन गर्ग संहिता में आता है, और पांडव गीत करके ग्रंथ है जिसको मध्व संप्रदाय के लोग कोट करते हैं, उसमें जब दुर्योधन से पूछा गया, दुर्योधन तो ऐसा क्यों करता है, भगवान कृष्ण ने कहा उसको बदलता क्यों नहीं, तेरे लिए अच्छा परिवार मिला है, राजपुत्र है, तू बदलता क्यों नहीं। दुर्योधन ने क्या कहा, उन्होंने वेदांत बोला भगवान कृष्ण को, उन्होंने कहा देखो कि जाना मैं धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जाना मैं अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं धर्म को अधर्म को जानता हूं लेकिन उससे निवृत्ति नहीं बन सकता, अधर्म में मेरा मन लगता है, जानता हूं कि अधर्म है। अगर जानकारी नहीं है, आज के लोग जानते भी नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यहां दुर्योधन कह रहे मैं जानता हूं ये धर्म है लेकिन उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं है, ये जानता हूं कि अधर्म है लेकिन उससे मैं रिटायर्ड नहीं होता, ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहते क्योंकि यथोंचसी तथा करोमी, हे कृष्ण जैसे आप इच्छा करते हो वैसे मैं कर्म करता हूं, मैं यंत्र हूं और आप ऑपरेटर हो। आप यंत्री हो, मैं यंत्र हूं, आप ऑपरेटर हो, तो मुझे क्यों दोष दे रहे हो। हुआ कि नहीं देखो, यानी कि ये जो भगवान के प्रति निर्भर होना, उनके प्रति डिपेंडेंट होना, ये दुर्योधन बोल रहे हैं। मैं तो कैसे हूं, मैं कठपुतली के समान हूं, भगवान की इच्छा के बिना पेड़ से घास भी नहीं निकलता, वैसे दुर्योधन सिद्धांत कह रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत गलत है, ये दैववाद गलत है। इसलिए वैदिक ग्रंथ पर न तो दैववाद कहता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहा है, जब भगवान चाहेंगे मैं मंदिर में चलकर आऊंगा, जब भगवान चाहे मैं सिनेमा मंदिर में चलकर जाऊंगा, जब भगवान चाहते मैं मध्य मंदिर में चला जाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं तो विवश हूं, आई एम हेल्पलेस। कितना अच्छा सिद्धांत है, देखो कितना उसका भगवान के प्रति विश्वास है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय विल ऑफ गॉड। क्या इस सिद्धांत को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो चलना जो धर्म के विरुद्ध है, फिर आप कह रहे हो एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय विल ऑफ गॉड, नहीं, ये सिद्धांत गलत है। और कर्मवाद क्या, कि जो कुछ भी हो रहा हो ये लोग कर रहे हैं, मैं खुद प्रयास करूंगा, अगर मेरे प्रयास में अगर कोई गलती से बाधा डालेगा वो मेरे प्रति अन्याय कर रहा है, अगर मेरे में शक्ति है उसके विरुद्ध जाने के लिए उसके मैं विरुद्ध जाऊंगा। जो विवश है, विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये ब्रह्मा जी नहीं कह रहे, हाथ जोड़कर खड़ा होना नहीं के अर्थ नहीं कि पूरे दिन ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं, आपको शरीर से प्रयास करना है लेकिन सिद्धांत को जाना है कि नो, इट्स एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय विल ऑफ कृष्णा। तो ऐसा कोई भी करेगा, ऐसा जो कर सकेगा, ब्रह्मा जी कहते कि वो सारे गोलोक का, वैकुंठ धाम का जो संपत्ति है उसका स्वामी बन जाएगा, इनहेरिट्स ऑल द वेल्थ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहां जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद नहीं किया है, कौन करा रहा है? दूसरे लोग करा रहे हैं। और जो पाखंडता, जो कर्ण में जो पाखंडता दिखाई देता है, इतना पाखंडता दुर्योधन में भी नहीं था, क्योंकि दुर्योधन पाखंडी नहीं था, वो स्ट्रेट इन आउट एंड आउट क्रिमिनल था। उसने कभी किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की, कर्ण क्या करता था, और दुर्योधन धर्म के बारे में जानता था, लेकिन बोलता था मैं करने वाला नहीं हूं, मैं अधर्म ही करूंगा, जानने दो लोगों को मैं किस प्रकार से हूं। तो पाखंड था। और एम्बिशन, एम्बिशन को क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। हमें महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा महत्वाकांक्षी था वो, इतना इंडिविजुअली महत्वाकांक्षी था, तो उसके महत्वाकांक्षी कारण भी उसको क्या हो गया, उसका नाश हो गया। और दूसरा है कि उसको जो लोगों को इंप्रेस करना था, काफी मात्रा में वो सफल रह गया, कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ करने के लिए बोल दिया उसे, जब कृष्ण ने कहा, कुंती ने कहा, भीष्म ने कहा, कृष्ण दो बार कहे कि देखो आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से धर्म का लाभ होगा, ऐसे करने से लोगों की हत्या नहीं होगी, वो तब क्या कहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाम खराब हो जाएगा। जनप्रिय बनने की जो इच्छा है कि मैं जनप्रिय बनना चाहता हूं, ये प्रश्न है कि जनप्रिय बनने में और धर्म के अनुसार कर्म करना कौन सा श्रेष्ठ है? कलयुग में अगर आप धर्म के नाम पर आप इलेक्शन में बैठ जाओगे, आपको अपना डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा, है कि नहीं? नहीं मिलेगा, संभव नहीं है। जनप्रिय बनाने की क्या, जो लोगों को चाहिए वही देना। लोगों को क्या चाहिए? अगर 100 चैनल है तो 200 चैनल चाहिए। और जैसे कलयुग में लोगों की बुद्धि, अगर आप अगर सही धार्मिक राजा हो, अगर आप मंत्री बनने को आपको अवसर मिल जाएगा, अगर आपने सोच दिया चलो मैं क्या करूंगा, सारे मदिरा पान के दुकान है उसको बंद कर दूंगा, सिनेमा थिएटर बंद कर दूंगा, और आपने जब कह दिया कि मैं क्रिकेट बंद कर दूंगा, तब आपको तुरंत ही नीचे उतार दिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज पीपल डोंट लाइक इट। इसीलिए राजा को प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, राजा जब राजा बनते थे वो किससे भीख मांगते थे? भगवान से भीख मांगते थे। परंतु आज के मंत्री अगर मंत्री बनना चाहते तो किससे भीख मांगते हैं? प्रजा से भीख मांगते हैं। यही अंतर है। राजा बनने में और मंत्री बनने में अंतर क्या है? एक किससे भीख मांग रहा है? प्रजा से। और प्रजा कौन है? प्रजा क्या है? एक इंग्लिश कहावत है, सब्जेक्ट्स आर मेनी हेडेड मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर विदाउट मेनी मॉन्स्टर्स विदाउट हेड। प्रजा क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनको कोई ब्रेन नहीं है, और वो निर्णय लेते कि आप मंत्री बनोगे, ये मंत्री बनेगा। देखो अंतर कितना है। इसलिए राजा जो भगवान उसको राजर्षि बनाते हैं, भगवान के द्वारा चुनाया जाता है, वो केवल ये नहीं सोचता कि अरे मेरे प्रजा को अच्छा लगेगा कि नहीं, वो इसको पसंद करेगा कि नहीं। नहीं, अगर धार्मिक प्रजा है निश्चित रूप से पसंद करेगा, अगर धार्मिक प्रजा नहीं है तो क्या पसंद करेगा? वो पसंद नहीं करेगा। इसीलिए धार्मिक होने पर भी पांडवों के पास कितने लोग आए? कितने लोग आए? 7 अक्षोहिणी। अगर इलेक्शन होकर चलो कौन सबसे ज्यादा संख्या में लेकर आएगा वही राजा बनेगा, ऐसा अगर सिस्टम होता है। दुर्योधन को प्रजा राज्य के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए पांडव बच गए। अगर उसको जानकारी होती डेमोक्रेसी, तो क्या होता? निश्चित रूप से उसका विजय हो जाता। यानी कि भगवान कृष्ण उनके पास में होने पर भी दुर्योधन की विजय हो जाती। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। पांडवों के पास केवल 7 अक्षोहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षोहिणी सेना थी, लेकिन फिर भी धर्म किसके पास में था? पांडवों के पास में था। उनका जीत हो गया। और बताया जाता है कि ऐसा नहीं कि सबके सब पांडव के पास में थे, वो सब कभी प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो गया कि पांडव के पक्ष में जितने लोग थे उनको तो जीवित रहना चाहिए था, केवल उसमें भी केवल पांच पांडव और भगवान कृष्ण के अलावा सबके सब मारे गए, थोड़े से सैनिक बच गए ऐसे ही जो साधारण, और कौरव पक्ष में केवल कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य बच गए और युधिष्ठिर बच गया। यानी कि इस युद्ध में बहुत सारे भक्त भी मारे गए, वही प्रश्न हो गया कि इतना सब करने पर भी मर क्यों गई, ऐसा है प्रश्न हो गया। लेकिन इसका भी उत्तर दिया गया कि ऐसा मत समझना कि सब लोग जो पांडव के पक्ष में थे वो सब भक्त थे, और सब जो कौरव के पक्ष में थे वो दुर्योधन के भक्त थे, ऐसा नहीं था। कई लोग अपना स्वार्थ साध्य करने के लिए दुर्योधन के पास में थे, वो जानते थे। देखो ऐसा सब हिस्ट्री महाभारत में है, अगर हम पांडव के पक्ष में जाएंगे तो पांडव विजय हो जाएंगे, तब क्या होगा जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनेगा, अगर युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाएगा तो हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमें हमेशा के लिए उसके आधीन में रहना होगा, हमें उनके आधीन में रहना होगा, इसीलिए हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए उनके आधीन में जाना पड़ेगा। इसलिए कईयों ने क्या किया, दुर्योधन के भाग में आए, दुर्योधन के पक्ष में आए। क्यों दुर्योधन के पक्ष में आए, बोले अगर संख्या बढ़ जाएगी इससे पांडव मारे जाएंगे और दुर्योधन राजा बनेगा, और अगर दुर्योधन राजा बन जाएगा तो क्या होगा, उसके राज्य में कोई सिस्टम नहीं रहेगा, कोई सिस्टम न होने के कारण हम अपने स्वतंत्रता को घोषित कर सकते हैं। गीता के पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे थे पहले दिन, जिस समय सारे कौरवगण अपना शंख बजाने लगते हैं, जैसे भीष्म ने बजाया तब क्या हो गया, कोई ऑर्डरलीनेस नहीं था, भीष्म बजाया चलो अभी दुर्योधन को बजाना चाहिए, उसके बाद कर्ण बजाएगा, कर्ण तो अलग शंख बजा रहा था, तो युद्ध में था ही नहीं, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो सबके सब साथ में सबको लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो सबके सब अपना अपना शंख बजा रहा है, कोई नगारे बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, कोई वो बजा रहा है, जैसे मैंने कहा क्याओस हो गया था उधर पूरा, जैसे अगर कीर्तन चल रहा हो, ये बहुत सुंदर उदाहरण है, समझ में आता है, अगर कीर्तन चल रहा हो, यहां कीर्तन गाने वाला यहां कीर्तन लीड कर रहा है, मृदंग वाला उस कोने पे है, करताल वाला उस कोने पे है, और आजकल झांबे भी आ गए है, और झांबे वाला वहां जो नाटक चल रहा है उसके लिए बजा रहे, तो उस कीर्तन में भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो वैसे कौरव सेना थी, वहां ऑर्डरलीनेस नहीं था, वहां केवल अपॉर्चुनिस्ट थे, संधि प्राप्त करने वाले लोग थे, अगर दुर्योधन राजा बन जाएगा तब क्या होगा, दुर्योधन मौज मस्ती में मग्न हो जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम स्वतंत्र है। परंतु पांडव में ऐसा नहीं था, और इसलिए जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई, देखो यहां कोई पांडव पक्ष वालों के प्रति भगवान पक्षपाती नहीं थे, धर्म के पक्षपाती थे, धर्म के पक्षपाती होने के कारण जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, तो भीम पूछते हैं भगवान आप किसके पक्ष में हो, हमारे पक्ष में हो उनके पक्ष में हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको तो खेद व्यक्त कराना चाहिए, आपको तो दुखी होना चाहिए। तो भगवान ने कहा मूर्ख, जानते नहीं कि अब कर्ण मरा हुआ ही समझो, पहले से मरा हुआ था, ये लीला है, भगवान इतने अर्जुन के प्रति प्रेम कर रहे थे, अभी मरा हुआ समझो, क्योंकि उसका जो शक्ति है वो भी नाश हो गया। और दूसरा है कि घटोत्कच है ही कौन, ठीक है तेरा पुत्र है, तेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन इस युद्ध के बाद अगर वो बच जाता मैं खुद उसको मारता, ये जानना चाहिए कि भगवान पक्षपाती नहीं थे, मैं उसको खुद मारता, क्यों, क्योंकि घटोत्कच अंत में ब्राह्मण और गाय के द्वेषी है, वो गवों का द्वेष करेगा और ब्राह्मणों का द्वेष करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को केवल मैं उपयोग में ला सकता हूं,
ओनली कृष्णा कैन यूटिलाइज हिम. अगर वो यूटिलिटी के बाहर चला जाएगा, हाथ के बाहर चला जाएगा, तब मैं क्या करेगा, उसको मैं खुद मारता था. तो वो कृष्ण, इसमें कोई पक्षपात नहीं है. अगर मेरे पक्ष के लोग हो उसको भी मार दूंगा. उस पक्ष के लोग भक्त है लेकिन गलत कर्म कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है भूरिश्रो को उसके शरीर के लिए दो दंड देना चाहता हो, दंड कृष्ण ने दे दिया. और उसके आत्मा के लिए जो बहुमान देना था, भेंट देना था, वो भेंट भगवान ने दे दिया. उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की. तो ये पक्ष है कि भक्तों का पक्ष ये है कि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ कर्ण, ये कर्ण के गुण है. और कर्ण भक्तों का पक्ष क्या है, उनका क्या कहना है कि ये सब कर्ण के साथ में हुआ था. इसलिए ऐसे बहुत फैब्रिकेटेड कहानियां बताई गई है, उसको मैं पहले सुनाऊंगा और उसके बाद हम सीधे व्यास देव जी के महाभारत में जाएंगे. एक कथा ऐसी है कि कर्ण और दुर्योधन में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था. एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी वो चेस खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे ऐसे मजाक में. तो उस चेस गेम में जो दुर्योधन की पत्नी हार गई, तो हारने के कारण उसको गुस्सा आ गया, उठकर जाना चाहती थी वो, ऐसा कुछ कहानी है. तो दुर्योधन की पत्नी जब बाहर जा रही थी, तब कर्ण ने क्या कर दिया, उसके साड़ी खींचा, प्रैक्टिस कर रहा था लगता है पहले है? तो उसके साड़ी को खींचा, उसको बुलाना चाहता था अंदर. फिर उसकी जो मोती की माला है वो टूट गई, वो नीचे गिर गई. और उसी समय दुर्योधन अंदर आ गया, उसने देखा. उसने देखने पर भी उसके मन में कोई संशय नहीं रहा. अरे मैं पूरा विश्वास रखता हूं कर्ण के प्रति, उसके मन में ऐसा कोई पाप नहीं है ये दिखाने के लिए. इसमें दुर्योधन की महानता को बताई जाती है. देखो कितना अपने मित्र के प्रति विश्वास था. और एक कहानी है कि कर्ण का जो रथ क्यों फंस गया. एक बार कर्ण अपने रथ पे जा रहे थे और जाते जाते एक बालिका जो ग्वाला की बेटी थी, वो मटका लेकर, दूध का मटका लेकर किधर जा रही थी. और इसका रथ इतने तेजी से आ रहा था, इस रथ को देखकर वो डर गई, उसका मटका नीचे गिर गया, दूध सब नीचे आया. तो कर्ण इतना संवेदनशील था, वो अपने रथ को रोका और बालिका को बोला कि आ जाओ मैं आपको दूध दिलवा दूंगा. बोली नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरी मां मुझे डांटेगी. तो उसने क्या किया कर्ण ने, बोला मुझे यही दूध चाहिए, क्योंकि बालिका थी ना, बालिक लोग अपने बच्चे लोग हट करते, मुझे यही चाहिए. नहीं नहीं दूसरा दूंगी, नहीं वही चाहिए. वैसे ही थी. तो कर्ण अपने शक्ति से भूमि को खोदने लगे. देखो कितना अर्थहीन कहानियां है. तो खोदने लगे और उस भूमि को खोदते खोदते सारे दूध को उन्होंने क्या कर लिया, चूस लिया. और वो मटके में भरकर उसको दे रहे थे, तब भूमि देवी प्रसन्न हो गई, वो वहां से आ गई और बहुत क्रोध दिखा रहे थे, तूने क्या कर दिया मेरे साथ, मेरा तू 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 क्यों से ऐसे कर दिया, तू क्यों खड्डा खोदा, आपने मुझे इतना दर्द दिया इसलिए मैं आपको शाप दूंगी. और शाप अभी नहीं बताऊंगी, इसका परिणाम आप खुद देखोगे. ऐसे पृथ्वी चली गई. देखो पृथ्वी कितनी अन्याय कर रही है. लोग कहते हैं कि सेवा कर रहा था एक साधारण किसी प्रजा का, और कर्ण ने कहा कोई चिंता नहीं, अगर मेरा जान भी चला जाए, अगर मेरे जान जाने से अगर मैं एक व्यक्ति की सेवा भी कर सकता हूं, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है. ऐसी एक कहानी आती है. और एक कहानी है कि जब कर्ण वहां गिरे हुए थे, रक्त से खून से ओतप्रोत हो गए थे, तो भगवान विष्णु कृष्ण फिर से वहां आए, दिखाना चाहते थे अर्जुन देखो कर्ण कितना दानशूर है. तो कर्ण को कहा कर्ण मुझे अभी दान दो, क्योंकि वो महाभारत में भी लिखा है कि वो दानशूर था, लेकिन उसके दानशूर को बढ़ाने के लिए क्या क्या कहानी लेकर आए हुए है कि उसको कहा कि आप इतने दानी हो मुझे कुछ दान दो. कर्ण ने कहा मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा है. हाँ नहीं कुछ तो दो, तो कर्ण के दांत सोने के दांत थे, पता नहीं वहां का कौन डेंटल डॉक्टर आ गए, उसके सोने के दांत थे, तो उसने वहां एक पत्थर लिया और उस पत्थर से अपने दांत तोड़कर कर्ण को दे दिया, विष्णु को दे दिया, तो विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। और एक बार कर्ण के घर में कोई ब्राह्मण आया, बारिश का मौसम था, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, लेकिन बारिश होने के कारण लकड़ी नहीं मिला, उसने क्या कि अपने घर का जो फर्नीचर है उसको अपने तलवार से तोड़ तोड़ कर उसको दे दिया, लेकर जाओ इसको, इसे यज्ञ करो। ऐसे जितने भी कहानी है सब कुछ बकवास है, एक भी कहानी शास्त्र में नहीं है, ऐसे आप भी लिख सकते हैं और मैं भी लिख सकता हूं। अगर आप कहानी ऐसे ही लिखोगे जो काल्पनिक बच्चों के लिए, कम से कम बच्चे लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कर्ण के नाम से, कृष्ण के नाम से, अगर कृष्ण को खलनायक बनाकर और कर्ण को हीरो बनाकर अगर मैं कहानी लिखूंगा तो इससे क्या होगा, इससे विपरीत परिणाम हो जाता है, ये शास्त्र के विरुद्ध है ऐसे कोई भी कहानी। और एक कहानी है, और एक कहानी है कि जिस समय वो परशुराम के घर पर विद्या सीख रहे थे उस समय इंद्र कीड़े के रूप में आ गए, आपने सुना होगा, इंद्र कीड़े के रूप में आकर उन्होंने क्या कर दिया, परशुराम का जो गोद था, उनका जो झांगे, उसमें छिद्र बना दिया, उस छिद्र के कारण, एक कहानी है लेकिन इंद्र आए ये कहानी गलत है, ऐसा कोई कहानी आपको किसी में भी दिखाई नहीं देगा। और दूसरी कहानी है, एक ग्रंथों में भी लिखा है, कोई महाभारत तात्पर्य में इसको लिखा है कि जब कुंती कर्ण के पास आई और कुंती ने कहा, कुंती ने कहा कि देखो आप केवल ये भिक्षा मुझे दे दो, आप केवल अर्जुन के साथ युद्ध करोगे, अगर आप अर्जुन के साथ इतना द्वेष रखते हो ये वरदान मुझे दे दो कि आप मेरे बाकी पुत्रों को नहीं मारोगे। तो कर्ण ने कह दिया कि ततास्तु, कि मैं और किसी को नहीं मारूंगा। तो को लोग कहते थे वो कर्ण कितना महान था कि उसको अवसर भी मिल गया था, हाँ अवसर मिल गया युधिष्ठिर को मारने, नकुल सहदेव को मारने, ये भी व्यासदेव लिखते, व्यासदेव कभी भी ऐसा पार्शलिटी नहीं करते, ये कहानी को उन्होंने छिपा कर नहीं रखा है, ये लिखा हुआ है। लेकिन भीम इसके पहले, जब इन भाइयों को मिलने के पहले, सहदेव नकुल और युधिष्ठिर महाराज को मारने के पहले भीम के साथ उसका काफी बार युद्ध हो जाता है, इसको आप महाभारत में पढ़ सकते हो, और कितने बार वो भाग जाते हैं, और एक बार ऐसी हालत होती है कि भीम मारने वाले होते हैं तब उनको याद हो जाता है कि नहीं अर्जुन ने व्रत लिया हुआ है। अर्जुन का व्रत क्या है कि मैं कर्ण को मारूंगा, इसलिए भीम छोड़ता है। और उसके बाद एक बार भीम उनके हाथ में फंस जाते हैं और अपना धनुष लेकर भीम को मारते हैं, बोला जाओ तुम्हारा काम केवल किचन में जाकर खाना बनाना और खाना है, ऐसे उनकी निंदा करते हैं। तो भीम को बड़ा गुस्सा आ जाता है, मैंने तेरे को छोड़ दिया और तू ऐसा बोलता है, तो इसको लेकर देखो भीम भी उससे मारा जाता था, युधिष्ठिर मारा जाता था, नकुल मारा जाता था, सहदेव मारा जाता था, लेकिन कितने दयालु उसको छोड़ दिया, लेकिन कब छोड़ा, क्योंकि उसको भी प्राण भिक्षा दी गई थी। ये युद्ध में होता है, जब आपका कभी जान चला जाएगा, कभी उसका जान चला जाएगा, जान जब तक जाएगा नहीं तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा नारायणास्त्र और सबके सब लेट गए और सब बच गए, तो दुर्योधन ने कहा और छोड़ना, बोला अभी नहीं छोड़ सकता हूं, इन्होंने मेरे बाण के सामने झुक लिया है, मरण से भी महान है। दुर्योधन ये फिलॉसफी मुझे पसंद नहीं है, मुझे उनका मरण देखना है। अगर तो तत्वज्ञान कह दिया कि वो मरने के समान ही है, मरने के समान और मरने में बहुत बड़ा अंतर है, दैट्स योर सेटिस्फेक्शन, ये तेरा सुख है कि देखो मैंने सबको सुला दिया। नारायण के सामने सोना ये दंडवत है, मरने के समान नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो अश्वत्थामा प्रसन्न हो गया, दे आर वर्स देन डेथ, नो इट्स नॉट वर्स देन डेथ, दैट्स अ टैक्टिक। युद्ध भूमि में अलग अलग प्रकार का तंत्र होता है, कृष्ण तंत्र को जानते हैं किस समय क्या करना चाहिए, तो कृष्ण को ही ऐसे योद्धा नहीं है। अगर समय मिले कृष्ण के तंत्र के बारे में हम जानेंगे। लोग कहते कि कृष्ण ने महाभारत में सारे नियमों को तोड़ दिया। नहीं सर, एक भी नियम नहीं तोड़ा। सब जो भी किया वो शास्त्र के अनुकूल ही किया हुआ है, ये हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। एक भी नियम नहीं तोड़ा, नॉट इवन वन रूल ही ब्रोक। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस नियम के लिए, इस तंत्र के लिए क्या दूसरा तंत्र है जो शास्त्र के पूरक ही है। क्योंकि भगवान मनुष्य लीला करने के लिए आते हैं, और खास करके वृंदावन के बाहर जो उन्होंने लीला की उसमें ज्यादा करके मनुष्य लीला ही है, और कभी कभी रेयरली विरल ही वो अपने दिव्यत्व का प्रदर्शन करते थे। केवल तंत्र के द्वारा उन्होंने सारे राक्षसों को मार दिया। तो ये जो पूर्व पक्ष है कर्ण के बारे में, जैसे एक है द्रोणाचार्य ने उनको नहीं पढ़ाया, नहीं हम लोग पहले से जाएंगे, चलो कुंती के साथ। जब कुंती का कुंती ने उस बालक को नदी में छोड़ दिया, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। तो जब कुंती ने छोड़ा, महाभारत में साफ साफ लिखा है कुंती ने गुप्त हर को भेजा, वहां भेज दिया, और वो पूरा जान गई कि इसका देखभाल करने वाले कौन है, अधिरथ सूत है। ययाति वंशज के थे, कितने साल से इनके परिवार के लोग कुरु वंश की सेवा किया करते थे। और सूत यानी कि कौन है, सूत कोई नीच जाति के नहीं है, नीच जाति उच्च जाति ऐसा कोई नहीं है, एक तो पहली बात है। अगर ऐसा अनुमान भी लोग लगाते हैं, कर्ण सूत जाति का नहीं था, जो नीच जाति का नहीं था, सूत यानी कि ब्राह्मण स्त्री में क्षत्रिय के द्वारा जो समागम होकर जिनका जन्म होता है उसको सूत कहा जाता है। ये भागवत में भी आता है, ये महाभारत में भी है, ये रामायण में भी है, ये शूद्र नहीं है। क्षत्रिय स्त्री और ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष में इनको वेद अध्ययन करने का अधिकार है, लेकिन वेद पढ़ा नहीं सकते हैं। इनको जो उपवित मिल जाता है, यज्ञ में भाग ले सकते हैं लेकिन यज्ञ नहीं कर सकते। ये वेदों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप में वो पुराणों को बोल सकते हैं। इसलिए सूत यानी कि सु यानी कि जो जन्म देने वाले, किसको जन्म देते हैं, वो हरि कथा को जन्म देते हैं, वो हरि कथा बोलते हैं। यानी कि उसको एक ऐसा अवसर था, अगर अधिरथ के परिवार में रहकर किसी का मंत्री बन सकता था, हरि कथा करने का अवसर था, लोगों को कथा सुना सकता था, लेकिन उसके एम्बिशन, उसके पास इतना एम्बिशन था, नहीं मुझे तो क्षत्रिय बनना है। हम कह सकते कि उसमें गलती नहीं, क्योंकि क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था। तो क्षत्रिय परिवार में जन्म होने के नाते उसके अंदर क्षत्रिय जो कर्म का जो गुण था वो था, जो एक्टिविटीज क्रिया, लेकिन संस्कार न होने के कारण इसका कैसे उपयोग करना चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ गई। एबिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, निष्णात बनना ये केवल महत्वपूर्ण ही है। निष्णात किसके लिए बन रहे हो? कंप्यूटर में एक्सपर्टी प्राप्त करना ठीक है, लेकिन वो एक्सपर्ट ही बनकर अगर चोर बन जाओगे वो गलत है। अगर टेररिस्ट होता है वो साधारण पुलिस ऑफिसर से ज्यादा निष्णात होते हैं, क्योंकि ज्यादा वही बॉम्ब फेंकते रहते हैं। आर्मी के लोग केवल परीक्षा करते रहते हैं, ये लोग फेंकते रहते हैं। जो माफिया है वो गोली चलाते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं। पुलिस और आर्मी लोग किसको मारते रहते हैं? किसी कठपुतली को मारते रहते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर एक्सपर्ट, लेकिन जो ह्यूमन क्रुएल्टी है ये इनमें ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में भाग लेते रहते उसमें। इसलिए निष्णात बनना महत्वपूर्ण है। इसलिए काफी वेबसाइट है, उसमें लिखा हु इज ग्रेटेस्ट आर्चर, अर्जुन या कर्ण, ऐसा डिबेट चलता है। लोग ने वेबसाइट बनाया हुआ है अभी भी, ऐसा नहीं कि पुराना जमाने का, अभी भी लोग इसके चर्चा में लगे हुए हैं कि हु इज ग्रेटर, यहां कृष्ण आता ही नहीं है, अर्जुन इज ग्रेटर और कर्ण इज ग्रेटर। तो उसके अंदर एक क्षत्रिय बनने की अभिलाषा थी, इसलिए ढूंढते ढूंढते आया और कहां आया, द्रोणाचार्य के पास आया। क्या द्रोणाचार्य ने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया? एक कहां भी नहीं लिखा है। द्रोणाचार्य के आश्रम में दुर्योधन के कारण द्रोणाचार्य ने उसको अस्त्र विद्या सिखाया, ये महाभारत में लिखा हुआ है, आदि पर्व में भी है और शांति पर्व में भी है, ये आप इसको पढ़ सकते हो। और क्योंकि द्रोणाचार्य के आश्रम में उसके सपोर्टर कौन थे, दुर्योधन सपोर्टर थे, इसलिए दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे थे और तब से पांडव के प्रति देश द्वेष उत्पन्न हो गया। और यहां शांति पर्व में लिखा है, जब अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ब्रह्म शीर्ष इस अस्त्र को प्रदान किया और किसी को नहीं दिया, न तो भीम को दिया, न तो युधिष्ठिर महाराज को दिया, पक्षपात नहीं किया क्योंकि योग्य थे उनको दिया, लेकिन हां उनसे गलती हो गई, उनका पुत्र आ गया, कौन, अश्वत्थामा, उसने कहा उसको दिया मुझे भी दे दो। द्रोणाचार्य का दुर्बलता क्या थी, धृतराष्ट्र के सामने वैसे ही थी, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति आसक्त थे वैसे द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के प्रति आसक्त थे, इसलिए उस आसक्ति के कारण उन्होंने कहा नहीं तो योग्य नहीं, मैं तो तुझे नहीं दे सकता, बोले नहीं मुझे चाहिए, तो उनको देना पड़ा। तो जब कर्ण आया उन्होंने कहा कि मुझे भी ब्रह्म शीर्ष चाहिए, तो द्रोणाचार्य ने कहा मूर्ख, तो ब्रह्म शीर्ष मांगता है, तेरे अंदर अधिकार है उसको स्वीकार करना, ये चलाने की बात नहीं है बल्कि वैसी योग्यता चाहिए, अगर कई अस्त्र स्वीकार करने के बाद, ये विष्णु पुराण अन्य ग्रंथों में लिखा है, ऐसे दिव्यास्त्र लेने के बाद अगर 100,000 गायत्री का मंत्र जब करना पड़ता है, कोई टेररिस्ट करेगा AK-47 मिलने के बाद कोई मंत्र करेगा? वो तो केवल किसके बारे में सोच रहा है, कि वर्जिन गर्ल्स के बारे में सोच रहा है, वो क्या मंत्र बोलेगा। इसलिए दिव्यास्त्र को धारण करने के लिए क्या चाहिए, इंद्रिय नियंत्रण चाहिए। देखो समाज कहते हैं नहीं वेपन्स देना नहीं की यू डोंट नीड, यहां पहले वेपन्स देना नहीं की इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हें ये अस्त्र कभी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो इसको धारण कर सकता है, अश्वत्थामा ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने उसके लिए नहीं दिया क्योंकि वो योग्य नहीं थे, केवल पुत्र व्यामोह में गिरकर दुर्बल होकर उसको वो अस्त्र दे दिया, उनके हाथ से गलती हो गई। और दूसरा जो तपस्वी क्षत्रिय है इस अस्त्र को धारण कर सकता है, इसलिए मैं इस अस्त्र आपको दे नहीं सकता, इसके पहले सब विद्या को उन्होंने दिया हुआ था। परशुराम के पास कब चले गए, केवल उस अस्त्र को धारण करने के लिए, यह भी महाभारत में प्रस्तुत है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं परशुराम के पास जाता हूं, बोले जाओ, तो गए परशुराम के पास और उनकी सेवा करने लगे और उन्होंने कहा मैं कौन हूं, मैं भृगु ऋषि के वंशज हूं, उस गोत्र का हूं, और उनकी सेवा करने लगे, उनकी सेवा करते रहे। और इस बीच में क्या हो गया जो कहानी है, क्योंकि उनका जो चक्का जो पहिया है वो जमीन में किसके लिए घुसा था, क्योंकि दूध निकाल रहे थे इसलिए नहीं, जब परशुराम के आश्रम में निवास कर रहे थे उस समय वो प्राणी की हत्या करने के लिए गए थे, शिकार करने के लिए, और जब वो शिकार करने के लिए गए थे उन्होंने क्या किया, किसी गलती से गाय की हत्या हो गई उनके हाथ से। यहां ये दिखाई देता है कि जो अस्त्र अंधा होकर चलाएगा उसके हाथ से होगा, जब अस्त्रों को बिना सोच समझकर छोड़ देते हो उससे क्या होगा, उससे हाथ से उसके हाथ से गलती होती है। जैसे रावण ने शूर्पणखा के पति को जो उसके सैन्य में था उसके सेना में था उसको मार दिया था, ये रामायण में आता है। When you kill your own soldier, आप अपने ही सैनिक को मारते हो, तो इसका अर्थ क्या हो गया है? कि बाण चलाने के लिए आता है, बहुत निष्णात है, लेकिन मधांध के कारण अंधा होकर अगर चलाओगे तो अपने ही लोग को मारोगे। वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फुटबॉल के समय ऐसा हुआ था कि अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया और कूदने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर गाय की हत्या होती है, गाय की हत्या हो गई, तब क्या हो गया? वो क्षमा मांगने लगे, अरे मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हमें जानना चाह रहे, वो ब्राह्मण ने क्यों नहीं क्षमा की, इतना कोई बड़ा पाप नहीं किया। नहीं, गाय को बचाने के लिए लोग अपने प्राणों को छोड़ देते हैं और आप खुद गाय की हत्या कर रहे हो। हमें जानना चाहिए जो वहां का जो संस्कृति क्या थी, वो ब्राह्मण कोई पाखंड नहीं था, ब्राह्मण को ऐसा ही गुस्से वाला नहीं था। वो आश्चर्यचकित हो गया कि एक क्षत्रिय होकर जिसका पूरा समय गायों की रक्षा के लिए देना चाहिए, खुद मार रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उनको शाप दे दिया कि मूर्ख, जब तू ऐसे युद्ध में भाग लेता हो जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उसके साथ युद्ध करते समय क्या होगा, आपका जो पहिया है वो जमीन में फंस जाएगा। बहुत प्रयास किया कर्ण, उसको ये भेड़ दो वो भेड़ दो, लेकिन वो चला गया। फिर परशुराम जी ने उनको ब्रह्मशीर्ष अस्त्र दे दिया, फिर भी आश्रम में रहने लगे। और एक दिन जब परशुराम जी जब वो लेटना चाहते थे, उपवास के कारण थक गए थे और इसके साथ निकट का संबंध हो गया था, वो लेट गए। तब कहां लेटे, वो कर्ण के गोद पर लेट गए, अपना सिर उसके जंगों पर रखकर वो सो गए। तो यहां इंद्र नहीं आया, एक अलर्ट नाम का एक कीड़ा आ गया, बहुत बड़ा कीड़ा। वो जो ड्रिलिंग मशीन होता ना, वैसे ही वो कीड़े ने कर्ण के जंगों को छिद्र करने लगा। वो छिद्र होता गया, छिद्र होता गया, और छिद्र होने के कारण खून निकलने लगा। और खून निकलने के कारण परशुराम जी जग गए, अरे क्या गरम क्या लग रहा है, गरम गरम रुधिर लग रहा है। उठ गए तो देखा कि कीड़ा उड़कर चला गया, और परशुराम जी ने उसको देखा, उनको देखते ही उसकी जान निकल गई और उससे एक राक्षस पैदा हो गया। वो राक्षस, उसने कहा कि मैं धम्स नामक राक्षस हूं, मैंने भृगु पत्नी को हरण कर लिया था। तो भृगु पत्नी को हरण करना चाहता था, उस समय भृगु ने मुझे शाप दिया कि तू राक्षस बन जा, ऐसा कीड़ा बन जा, खून पीने वाला कीड़ा बन जा। तो उनके शाप से मेरी हालत ऐसी होगी। मैंने कहा कम से कम कुछ समय तो बताओ, कब शाप मुक्त हो जाएगा, बेशरम, देखो पाप करना फिर इसके लिए भी पूछा। तो भृगु महर्षि ने कहा ठीक है, जब परशुराम जी आपको इस शाप से मुक्त कर देंगे। तो इंद्र कहां है, कौन से कहानी में, ये इंद्र नहीं, ये कौन था, ये अलर्क नाम का एक राक्षस था। वो आकर एक्सीडेंटल बोलो या जंगल में रहते हो तो कीड़े आते ही है, जहां यहां रहोगे तो सांप निकलेंगे, बिच्छू निकलेंगे, आप इन्हें के दर किसने मुझे भेजा है। अगर कोई ऐसा कहेगा सांप किसने यहां भेजा है, ना जंगल में तो सांप रहेंगे, वैसे कीड़ा था वहां ही बैठ गया, उसका नसीब उसका डेस्टिनी खराब था। तो परशुराम जब इधर देखा, अरे ये क्या है, अगर तो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण खून को सहने खून को देखकर बेहोश हो जाता है, ब्राह्मण तपस्या कर सकता है, उपवास रह सकता है, क्षत्रिय उपवास नहीं रह सकता, उसको खाना चाहिए। और क्षत्रिय कितने भी घावों को अपने शरीर पर ले सकता है, जितने ज्यादा घाव है उतना महान क्षत्रिय। उनका ऑर्नामेंट क्या है, उनका ऑर्नामेंट यह है कि उनके शरीर पर अलग अलग घाव है, उसको सहन करना, उसको सुखाना, फिर से युद्ध के लिए जाना। लेकिन ब्राह्मण ऐसे सहन नहीं कर सकता। भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग शक्ति दी है। जो वैश्य है वो गौरनिता की जाए, वो क्या कर सकता है, वो उपवास रह सकता है पैसा कमाने के लिए, वो उपवास रह सकता है, वो खाना पीना भूल जाएगा, नींद भी भूल जाएगा। भगवान के लिए उपवास करो वो नहीं होगा, पैसे के लिए उपवास रह सकता है, लेकिन अगर उसका पैसा छीन लो तो क्या होगा, उसका जान निकल जाएगी। इसलिए मनुष्य संहिता में लोग कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम जब एक लड़े की बात आती है, दंड क्यों शास्त्र में अलग अलग दंड दिया गया। ब्राह्मण के लिए अलग दंड है, क्षत्रिय के लिए अलग दंड है, वैश्य के लिए अलग दंड है, शूद्रों के लिए अलग दंड है, सबके लिए समान दंड नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो जैसे देखा एक तेरे हाथ में नहीं होगा, अगर तू ब्राह्मण होता तो इसको सहन नहीं कर सकता, बताओ सच सच तुम कौन हो। तो उसको कर्ण को कहना पड़ा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं सूत हूं। वहां वो खुद कहता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के समागम से मैं पैदा हुआ हूं, मैं सूत पुत्र हूं। तो जो परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया। उन्होंने कहा ये ब्रह्म शीर्ष आप जब तक याद रखोगे, कब तक, जब तक आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके सामने नहीं आएगा। और जब आपके सामने सबसे बड़ा शत्रु आएगा तब ये जो अस्त्र, ये अस्त्र ऐसे पीछे नहीं होता, तर्कस में नहीं होता, इसको मंत्र के द्वारा बुलाना पड़ता है, उसको भूल जाओगे। तो कोई कह सकता है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, उसने बहुत प्रयास किया परशुराम जी को प्रसन्न करने हेतु, लेकिन परशुराम जी माने ही नहीं। तो कहते देखो दोनों ब्राह्मण ने, जिसने गाय के लिए शाप दिया और परशुराम जी ने शाप दिया, दोनों ब्राह्मण ये जानने के बाद एक कम जाति का है उससे सारी विद्या हरण करना चाहते थे, इसलिए उसको शाप दिया। ये उनका कॉमेंट्री है, ये व्यासदेव जी का कॉमेंट्री नहीं है। व्यासदेव जी का कॉमेंट्री क्या है कि जब द्रोणाचार्य ने कह दिया कि तपस्वी ब्रह्मचारी ब्राह्मण होना चाहिए, ब्रह्मचारी ब्राह्मण होना चाहिए, और दूसरा तपस्वी क्षत्रिय होना चाहिए, उसको ही मिलेगा, ये समझने पर भी उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए जाना, ये पहली गलती थी। और दूसरी गलती झूठ बोलना, क्या इसका परिणाम नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, इसके लिए पूरे ब्राह्मण जाति को एक गाली देने लोगों, उसने जो गलती की उसके लिए विपरीत परिणाम नहीं होगा, परिणाम होना ही चाहिए। फिर वापस आ गया, उन्होंने कहानी दुर्योधन को सुनाई और इसके बीच में जब मैच हुआ, इस मैच में जो प्रदर्शन मैच हो गया, द्रोणाचार्य ने देखा कि सब लोग इतने निष्णात है, उनसे प्रदर्शन कराया, तो कर्ण वहां आ गए, बोला मैं भी कर सकता हूं जो अर्जुन ने किया है। तो उन्होंने करके दिखाया, फिर वहां बात चली, तो उन्होंने कहा मैं भी अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तो युद्ध करने की तैयारी करने लगे, तब कृपाचार्य ने पूछा रोको एक मिनट, बोला युद्ध करने के पहले अर्जुन के साथ आपको बताना है कि आप किस कुल के हो, किस परिवार के हो, किस राज परिवार के हो। पहले ये सब कुछ देखा जाता था, क्योंकि मित्रता जैसे आजकल भी देखते कंपनी में, अगर आप किताब वितरण करने जाओ, जहां जो कामगार होते हैं उनके पास मैनेजर लोग नहीं आएंगे, आते क्या कभी देखा है, नहीं आते, बोलते हमारे लिए दूसरा स्टॉल लगाओ। हमने कितने बार ऐसा अनुभव किया है, जो हायरार्की है, जो भेदभाव अभी भी चलेगा, ये चलता रहेगा, इसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन इसका शोषण नहीं करना चाहिए। तो यहां क्या हुआ कि जब प्रताप रुद्र के पुत्र ध्रुव महाराज प्रभु अपनी किताब में लिखते हैं, जब उनका कृष्णदेवराय के साथ युद्ध हुआ, उसमें वो हार गए, फिर एक प्रदर्शन मैच चल रहा था, उसमें प्रताप रुद्र का पुत्र एक कृष्णदेवराय के जो सैनिक के साथ, हाँ, उनका प्रदर्शन मैच चल रहा था, जब उनको समझ में आ गया कि यार एक्चुअली क्षत्रिय परिवार का नहीं है, तो उनके पुत्र ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर ली। एक हिस्ट्री रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, हाँ। तो उन्होंने, अरे ऐसा कैसा कर दिया, राजा ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों दिया, मेरे को साधारण व्यक्ति के साथ क्यों लड़ने के लिए बोल दिया। तो वहां ये प्रदर्शन मैच चल रहा है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो कोई भी नहीं आ सकता, तो गलती इसकी थी, आ गए उधर अपने एम्बिशंस को दिखाने के लिए। तो इसलिए कृपाचार्य ने पूछा, और जैसे अधिरथ वहां आए, इन्होंने प्रदर्शन किया था इंडिपेंडेंटली, अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता था, तो जैसे अधिरथ को देखा, वहां भीम के मुख से निकला, ए सन ऑफ अ कारपेंटर, सूत पुत्र, निकल जाए ऐसे। तो क्या भीम ने गलती की, भीम जब बोलते थे उन्होंने केवल कर्ण को नहीं बोला। अगर जहां भी गलती है कि भीम का स्वभाव नहीं था कि जाकर लेटर भेजो, आपके हाथ से ऐसा हो गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। भीम का स्वभाव क्या था, साफ साफ बोल दो मुंहफट। जहां गलती है अगर कोई क्यों ना हो उसको बोल देते थे। हो सकता है दुर्गुण है लेकिन ऐसे बोलने वाले भी चाहिए। अगर युधिष्ठिर महाराज कुछ बोलते ही नहीं है, अर्जुन कुछ बोलते ही नहीं, नकुल सहदेव कोई बोलते, कोई तो बोलने वाला चाहिए ना। तो चार लोग बोलने वाले नहीं है तो नेचुरल है कि स्वाभाविक है जो पांचवा वाला बोलने वाला उसका थोड़ा पांचों का लेकर जब बोलेंगे थोड़ा उसमें के रहेगा ही। तो उसमें भीम की कोई गलती नहीं थी, भीम कोई जातिवाद नहीं थे, केवल उन्होंने इनको नहीं कहा, कर्ण को नहीं कहा। जिस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य उसके गुरु थे, ब्राह्मण थे, क्या उनको छोड़ा उन्होंने? अगर आप पढ़ोगे जितना उन्होंने कर्ण को तो एक ही शब्द से बोला, एक ही श्लोक में, लेकिन द्रोणाचार्य को जो बोलते हैं, बोले ब्राह्मण तेरा पुत्र मर गया है, लोभी ब्राह्मण अभी भी युद्ध करता है, तुझे शर्म नहीं आता? इतनी आसक्ति अपने शरीर को बचाने के लिए, बार बार उसके रथ को तोड़ते हैं और बार बार उनकी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य तैयारी नहीं हो रहे थे रोकने के लिए, ब्राह्मण होकर भी वो छोड़ नहीं पा रहे थे। यहां भीम ने ये नहीं किया कि नहीं नहीं ब्राह्मण है, ये कुछ भी नहीं कर, इसको हम कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये कितना भी गलत करेगा ये ठीक है, नहीं, उनको भी दिया, उसमें कोई वो डरे नहीं। बलराम जी जब गलत, अब ये लीला है बलराम जी, महाभारत के बलराम जी और कृष्ण लीला के बलराम जी में ये बहुत सुंदर अंतर है, ये लीला के कारण होता है। जैसे शरबत पीने के लिए शक्कर के साथ नमक भी डालते हैं, डालते कि नहीं, तो नमक डालने से शरबत में एक अलग प्रकार का जो स्वाद आ जाता है। इसलिए महाभारत में बलराम जी कभी कभी ऐसे वचन बोलते हैं तो सब लोग देखते रहते हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, दुर्योधन का बाजू लेना, युधिष्ठिर को डांटना, जुआ में गलती सब आप लोग की थी पांडवों की, और आगे सारा तीर्थ यात्रा खत्म हो गया और बराबर जब भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था उधर ही आगे, बाकी पीछे जो हुआ था उसको भूल गए बलराम जी, क्या क्या धर्म हुआ था क्या नहीं हुआ था, उनको लगा मैच चल रहा है, मैच नहीं चल रहा था, युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध। और स्वाभाविक है भीम ने अपना व्रत पूरा कर लिया, उन्होंने कहा था कि मैं इसके जांघों को तोड़ दूंगा। और एक नियम ऐसा है कि जब कोई योद्धा हवा में उड़ जाता है, जब हवा में उड़ने से, क्योंकि गदा युद्ध में नीचे मारना ये निर्बंध है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर कोई हवा में आ जाता है उसको मार सकते हो। तो बलराम जी ने क्या किया, केवल वही देखा कि तूने कहां मारा, उनके जांघों को मार दिया और वो मारने के लिए आए। तो भीम भी वहां क्रोध दिखाते, आप कह सकते हो अपने गुरु के प्रति क्रोध दिखा रहे, वो भीम का स्वभाव है, जहां अन्याय है उसको सीधा सीधा बोलेंगे, मन में नहीं रखेंगे, मन में नहीं रखते थे, उन्होंने जाकर उनके प्रणाम भी करते हैं, लेकिन जहां गलत दिखाई दिया अन्याय हो रहा हो उसको बोल देते। यहां भी छोड़ो, जब कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे थे और युधिष्ठिर महाराज तो पहले से शांति की ही बात करेंगे और किसकी नहीं, बोले शांति बनाओ, अगर पांच गांव भी मिल जाएगा ठीक है। और अर्जुन क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज के, अर्जुन का जो कैरेक्टर इतना सुंदर है महाभारत में, सब गुण संपन्न है अर्जुन, बोलने में भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, बाण चलाते बड़े प्रेम से ही चलाते हैं, लेकिन लगता बहुत खतरनाक, भीष्मदेव कहते हैं ये अर्जुन के बाण है, प्रेम से छोड़ रहे रोते रोते हुए, लेकिन मुसल के समान तेज आते अंदर। तो अर्जुन भी उन्होंने वही कहा, और नकुल सहदेव का अपना खुद मत था ही नहीं, वो तो युधिष्ठिर महाराज और उनका ही बात मानेंगे। तो कृष्ण सोच रहे थे भीम से कुछ अलग मत आएगा, तो भीम ने क्या कहा कि कृष्ण आप कृपा करके पूरा जान लगाकर प्रयास करो शांति बनाने के लिए, शांति भीम के द्वारा। तो भगवान कहते आज क्या हो गया, सूर्य शीतल चंद्रमा के समान हो गया, ये तो उल्टा हो गया, जो जो हिमालय पर्वत क्या हो रहे वो गर्मी पैदा कर रहे हैं, भीम आप डर गए क्या? तो भीम कृष्ण को भी डांटते हैं, बोला क्या आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई डरा हुआ नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, इतना सारा नर संहार होगा, इसको मैं रोकना चाहता हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हो, कृष्ण को भी डांटते। तो भीम का स्वभाव है, केवल उसी एक कहानी को लेकर कि देखो भीम जातिवाद कर रहे हैं, ये कहना गलत है। जहां भी देखो, जहां भी भीम है वहां क्या है, वहां प्रेम के बातें नहीं है, प्रेम के बातें जहां प्रेम करना है वहां ही प्रेम करेंगे, जहां प्रेम नहीं करना है वह प्रेम नहीं करेंगे। यहां तक कि जब द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज खो गए जुआ के साथ, तो भरी सभा में उन्होंने क्या कहा युधिष्ठिर महाराज को, हे सहदेव जाओ, बोले जाओ जाओ और लेकर कुछ जलता हुआ लकड़ी लेकर, क्यों, क्योंकि ये जो युधिष्ठिर है ना हमारा बड़ा भाई, इसके कारण ही हमारी ऐसी हालत हो रही है, द्रौपदी को हमने खोया हुआ है, तो लेकर आओ लकड़ी जलता हुआ, इसके दोनों हाथ जला देता हूं। अर्जुन बोलते ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये फूट हमारे में नहीं पड़नी चाहिए, लोग यही देख रहे हैं, कौरव लोग इसका ही प्रतीक्षा करें कि जब हमारे में फूट पड़ जाएगा। तो जहां गलती है उस गलती को सुधारना, दरअसल टिपिकल स्टाइल ऑफ भीम। तो और क्या आपको उदाहरण चाहिए ये समझाने के लिए कि भीम की गलती नहीं ऐसा बोलना, इस भाई के तू सूत पुत्र, तेरे को इसमें अधिकार नहीं है। तो तुरंत दुर्योधन ने क्या कर दिया, उनका मित्रता कहां हो गया, यहां हो गया। तो दुर्योधन ने कहा, ये उन्होंने भीम को गाली दी, हमेशा अवसर देखता था कब भीम को गाली दो, और यहां गाली देने में वो थोड़ा सही था। उसने कहा, हे भीम तू क्या जानता है, जो सिंह के गर्भ से सिंह निकलता है, भेड़ी नहीं निकलती है, जानते नहीं कि साधारण पुरुष नहीं है ये, साधारण किसी स्त्री के गर्भ से नहीं निकला है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में दुर्योधन जान गए सूत नहीं है क्षत्रिय है, इसलिए उन्होंने कहा ये साधारण नहीं, इसलिए मैं इसको अंग देश का राजा बनाता हूं। तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, उसको अंग देश का राजा बनाया, उसका अभिषेक हो गया और अंग देश के राजा बन गए। इसके साथ हम लोग विश्राम करेंगे, बाद में कितने बजे साढ़े छह बजे फिर आगे बढ़ेंगे कर्ण के बारे में। उन्होंने कहा उनको राजा बनाया। अब इस शास्त्र के अनुसार दुर्योधन राजा नहीं था और धृतराष्ट्र राजा नहीं था। जब तुम राजा स्वयं नहीं हो, दूसरों को राजा कैसे बनाते हो? अगर राजा बना भी दिया अंग देश का, महाभारत में एक बार भी नहीं लिखा है कि कर्ण अंग में गया और वहां से राज्य कारबार किया। राज्य कारबार कहां से कर रहा था? राज्य कारबार नहीं कर रहा था, सारा कारबार कर रहा था। कहां बैठकर? हस्तिनापुर में बैठकर। सोचो अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, आपको कहां रहना चाहिए? बॉम्बे में रहना चाहिए, लेकिन बार बार हमेशा गोवा बेंगलोर भागते रहते हो, आपका हजरी महाराष्ट्र में लगता ही नहीं है, फिर आप कैसे मुख्यमंत्री हो? देखो जिसको राजा बनाया, लेकिन इनका कारस्थान कहां चल रहा था? इनका कारस्थान हस्तिनापुर में चल रहा था। एक बार भी अंग देश गए ऐसा उल्लेख कहां भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि कारस्थान करने के लिए सबसे अच्छा जगह दिल्ली है, वहां बैठकर सारा कारस्थान कर रहे थे, एक बार भी नहीं गए। यानी कि राजा बनाने वाले योग्य नहीं थे, धृतराष्ट्र उनको अनुमति नहीं देना चाहिए था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा होने वाले थे, दुर्योधन राजा नहीं था, जो राजा नहीं थे उन्होंने राजा बनाया, ये राजा बन भी गए, अगर राजा बन भी गए तो कम से कम जाना चाहिए था उधर, वो भी नहीं गए। गांधार नरेश है, लेकिन रहता था कहां? हस्तिनापुर में रहता था। तो इनकी जो जोड़ी जम गई थी, दुशासन, कर्ण, शकुनि और दुर्योधन, इसलिए इन चारों को व्यासदेव जी अपने पहले ही अध्याय में क्या कहते हैं, ये चार खलनायक है। जब व्यासदेव उनको खलनायक बनाते हैं और हम लोग जबरदस्ती से उनको हीरो बनाना चाह रहे, ये ठीक नहीं है। तो यहां जब उसको राजा बनाया, तब दुर्योधन से कर्ण ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तब दुर्योधन ने कहा, देख मित्र, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूं कि आपकी मित्रता, देखो क्या अनहित अहित की भक्ति है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, मैं यही चाहता हूं कि आपसे मेरा हमेशा के लिए मित्रता रहे। ऐसे उन्होंने वरदान मांग ली। तो वहां कर्ण ने वचन लिया कि कुछ भी हो जाए दुर्योधन, मैं आपका मित्र रहूंगा और आपके लिए मैं आगे युद्ध होगा। उस युद्ध में किसको मारूंगा? अर्जुन, अर्जुन को मैं मार लूंगा। तब दुर्योधन का जो भय था, जो हमेशा भय रहता था अर्जुन का भय, वो चला गया, कम से कम टेम्पररली वहां चला गया। तो इस प्रकार से उनकी घनिष्ठ मित्रता कर्ण और दुर्योधन की बनी रही और आज भी लोग उसको बनाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देखो दिस फ्रेंडशिप इज अनब्रेकेबल, और इसको कैसे ब्रेक करना चाहिए इसके बारे में चर्चा हम शाम के समय करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कथा 7 बजे है, 6:30 बजे नहीं, 7 बजे।